ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دی چیف ڈیجیٹل آفیسر آف دی نیشنل بینک آف پاکستان وچ از ون آف دی لارجسٹ اف ناٹ دی لارجسٹ بینک ان پاکستان. پورے پاکستان میں ان کی 1500 برانچز پھیلی ہوئی ہیں اینڈ دے آلسو ہیو دی ہائیسٹ اے ٹی ایم ان دی ورلڈ جو کہ خنجراب پاس پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ان سے کانورسیشن کرنے کا ایک لارجلی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے جو اکنامک کرائسس ہے اس کے پیچھے ایک کور کمپوننٹ جو ہے نا جو کہ اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہے ڈیجیٹائزیشن آف آر فائنینشیل سسٹم. اس میں ہم نے کیش لیس ہونا ہے, اس میں ہم نے ڈیجیٹل ہونا ہے, اس میں ہم نے انشور کرنا ہے کہ جو ہماری ان بینکڈ پاپولیشن ہے ان کو ہم فائنینشلی انکلوڈ کریں, ان کو ہم پروڈکٹس اور سروسز دیں جو کہ کوئی بھی ماڈرن اکانومی اپنی پاپولیشن کو آفر کرتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے بینک سے بات کرتے ہی ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ نیشنل بینک جو کہ اگین ایک گورنمنٹ ادارہ ہے, بہت ایک پھیلا ہوا ایک بہت ایکسٹینسو نیٹورک ہے ان کا, اور جو ایک آرڈنری پاکستانی ہے ان کی بہت زیادہ انٹرفیسنگ ہوتی ہے ود دا نیشنل بینک. سو آئی تھاٹ کہ میں ان کے چیف ڈیجیٹل آفیسر کو بلاؤں اور انڈرسٹینڈ کروں کہ نیشنل بینک آج کل کیا کر رہا ہے, اوور آل پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں, آنے والے وقت میں وہ کیا چینجز پوٹینشلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں جو چینجز آلریڈی آنی تھیں, چاہے وہ راست پیمنٹ گیٹ وے کی ہوں, چاہے وہ کیو آر پیمنٹ سسٹمس کی ہوں, یا جو ہمارے سائبر سیکیورٹی کے مسائل ہیں پاکستان میں, اس میں بینکنگ سیکٹر کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. بٹ اینی ویز ہم نے یہ تمام چیزیں اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کی ہیں. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اگر آپ چینل پہ پرانے ہیں تو ہمیں لائک کرنا مت بھولیے گا, اٹ ریلی ہیلپس دی الگوریتھم. اگر آپ کے کوئی تھاٹس ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آ کے بتائیں, اٹ ریلی ہیلپس اس امپروو دا کوالٹی آف دی کانورسیشن. بٹ اینی ویز دس از سہیل ملک آن ٹی بی ٹی اسلام آباد اسٹوڈیو. سہیل بھائی السلام علیکم.
السلام علیکم,
کیسے ہیں آپ؟
بالکل ٹھیک, آپ سنائیے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
اللہ کا شکر. میں تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گا, اگر آپ کوئک ایک شارٹ سمری مجھے دے سکیں کہ آپ نے ارلی لائف کہاں پہ گزاری, پیدا کہاں پر ہوئے, اور تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو بینکنگ اینڈ اینڈڈ اپ ایز دی چیف ڈیجیٹل آفیسر ایٹ نیشنل بینک.
اوکے جی, سو میں اگر آپ کو شروع سے بتاؤں تو آئی بیسکلی بلانگ ٹو اے ویری اسمال ٹاؤن کالڈ نواں جنڈا والا. اٹ واز پارٹ آف ڈسٹرکٹ میاں والی, لیٹر دیٹ کیم ایز ڈسٹرکٹ بھکر.
تو اور ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں؟
ادھر ہی پیدا ہوا جی, ادھر پیدا ہوا. میں نے اپنی انیشیل جو ایجوکیشن ہے وہیں سے لی. 1998 میں میں اسلام آباد آیا, یہاں سے میں نے پم سیٹ سے ایم بی اے کیا. ایم بی اے جب میں کر رہا تھا تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ وتھ سٹی بینک ان کریڈٹ کارڈ سیلس. آئی ورک دیئر کوئی لیس دین ون ایئر اینڈ دین آئی جوائنڈ پاک نیٹ. اٹ واز ڈیٹا ونگ فار, ایک سبسڈی تھی پی ٹی سی ایل کی جو کہ ان کی ڈیٹا سروسز کو مینیج کرتی تھی. لائک آج جو آپ کا براڈ بینڈ ہے, جو آپ کا آئی پی ٹی وی ہے, یہ سارا پاک نیٹ مینیج کرتا تھا. وہاں سے مائی لاسٹ ڈیزگنیشن واز کنٹری مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد آئی موو ٹو لاہور 2008 میں میں نے وتین ٹیلی کام جوائن کیا. میں جو ان کی پری پیڈ سروسز ہیں, ڈبلیو کارڈ ایک ہوتا تھا بڑا فیمس کنورج واؤچر کارڈ ہوتا تھا, وہ میں دیکھتا تھا. پھر وہاں سے آئی جوائن ڈی وی کام, میں چیف کمرشل آفیسر تھا ڈی وی کام کا. اور پھر وہاں سے اگین 2012 آئی جوائنڈ ایم سی بی, میں ایم سی بی کا برانچ لیس ہیڈ تھا. اور وہاں سے پھر آئی جوائنڈ فنکا ایز ہیڈ ڈیجیٹل بینکنگ. اینڈ 2017 میں آئی جوائنڈ فرسٹ مائکرو فنانس بینک, اس وقت ہوتا تھا, آج کل ایچ پی ایل مائکرو فنانس بینک ہے, ایز چیف ڈیجیٹل آفیسر. آئی ورک دیئر ٹل مے 2022 اینڈ مے 2022 میں آئی جوائن نیشنل بینک. اور پچھلے دو سال سے آئی ایم ورکنگ ان نیشنل بینک. آج کل آئی ایم لوکنگ آفٹر دی ڈیجیٹل بینکنگ گروپ آف دا بینک, اور وی آر ٹرائنگ ٹو سالو ایکچولی کسٹمر یوز کیسز, ٹو ٹرانسفارم دی بینکنگ, ان کے لیے کسٹمر کے لیے ایز پیدا کرنا. مطلب بیسک پرپز ڈیجیٹل بینکنگ آپ کہیں بھی دیکھیں گے. میں اپنی ٹیم کو کہا کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل بینکنگ کا مطلب ہے لوگوں کو ڈریمز دکھانا, چاہے وہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ آپ کے کسٹمرز ہیں. آپ ان کو ڈریمز دکھاتے ہیں کہ یار آج دنیا ایسی ہے, ہم دنیا کو ایسے بنانے جا رہے ہیں. ہاؤ یو ڈو یور بزنس اسٹارٹنگ فرام امپلائمنٹ. آپ جب لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو بینک کیسے ہائر کرتا ہے, اٹس اے پروسیس. اوبویسلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں مینول ہوتی ہیں, आप एप्लीकेशन कैसे लेते हैं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कैसे लेते हैं, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, लोगों को हायरिंग इंटीमेशन कैसे देते हैं, उस सारे प्रोसेस को जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनोवेट करते हैं, दैट कम्स अ डिजिटल इनोवेशन। तो आपका वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी है, चाहे आप क्लाइंट लेके आ रहे हैं, आप एम्प्लॉई लेके आ रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं, आप डेबिट कार्ड दे रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आप अकाउंट खोल रहे हैं, इट्स वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो डिजिटल बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द वे ऑफ डूइंग बिजनेस।
पैसा 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 भाई, सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली और अब सोए सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत। कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुके छुके पैसे बनते रहें। तो जाओ sarmaya.pk पे और ये दो कोर्सेज चेकआउट करो।
वतीन का मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एक ज़माने में इट वाज एवरीवेयर, इट सीम्ड लाइक के यू नो इट्स दी, और ये वतीन पीछे से बैक्ड बाय किसका था?
अबू धाबी ग्रुप।
अच्छा
जी।
और इन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया या डिड दे गेट मर्ज्ड इनटू समथिंग एल्स? क्योंकि एकदम से बहुत अच्छा हर जगह था और फिर एकदम से इसका डाउनफॉल आया और you know you can't find it anywhere anymore.
Ji, actually aapko pata hai jab technologies change hoti hain to bahut si cheeze obsolete ho jati hain. Ek daur tha jab Pakistan mein sirf broadband DSL hota tha, uski bhi badi specific limits hoti thi, to us daur mein WiMAX aana ek bahut badi baat thi, jahan isko aap actually high broadband keh sakte hain. To WiMAX technology obviously zara mehngi hoti hai. WiMAX technology ki jab deployment hui to Vatin was more focused toward the consumer. तो हर जगह पे उन्होंने कंज्यूमर को इंटरनेट देने की बात की। अब जाहिर बात है वो जो WiMAX डिवाइसेस हैं वो भी इटसेल्फ महंगी हैं। लाइक मैं अगर 2008-09 की बात करूं तो 18-20 हज़ार रुपये की एक डिवाइस होती थी। तो एक कंज्यूमर को ये कहना कि यार 18-20 हज़ार रुपये लगा के आप इंटरनेट लगाएंगे तो एक एंट्री बैरियर आ जाता है। फिर इन द मीन टाइम 2010 से ऑनवर्ड आपने देखा है कि टेलीकॉम के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है ऑन द इंटरनेट साइड। लाइक 3G की बातें शुरू हो गई थी, 2G बहुत आगे एडवांस लेवल पे चला गया था, एज आ गया था। तो फिर लोगों ने WiMAX के बजाय, वो जो चूंकि एक एंट्री बैरियर था, तो लोग मोबाइल की तरफ ज़्यादा चले गए, जिस वजह से क्या हुआ कि एक डाउनफॉल हो गया फ्रॉम दी डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। तो वतीन आज भी दे आर वर्किंग इन दी कॉरपोरेट सेक्टर, लाइक ऑन दी लॉन्ग हॉल जो है वो काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट कनेक्टिविटी वो दे रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री को दे रहे हैं, बाकी जगहों को दे रहे हैं, बट जो कंज्यूमर साइड है वो उनको ऑब्वियसली बंद करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी चेंज।
और कॉर्पोरेट को वो क्या फाइबर ऑप्टिक में आ गए,
फाइबर ऑप्टिक लॉन्ग हॉल दे रहे हैं सर्विसेज, उसके अलावा कनेक्टिविटी सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड ये जो आपकी बैंडविड्थ है ये दे रहे हैं। तो सर्विसेज अभी भी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, जो कंज्यूमर साइड है वो उन्होंने बंद कर दिया।
मेक सेंस। एंड देन वतीन के बाद दो तीन हॉप्स के बाद देन यू मूव टूवर्ड्स द बैंकिंग साइड, हाउ डिड दैट शिफ्ट हैपन? क्योंकि वतीन और उसके जो मतलब वो वहाँ पर आप मार्केटिंग सेल्स वो भी टेलीकॉम यू नो वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री एंड देन बैंकिंग तो वैसे भी बड़ी क्लोज नेट सी होती है, बड़ी गेट कैप्ट होती है, बैंकिंग कम्युनिटी लेफ्ट राइट को एंटर नहीं होने देती। सो हाउ डिड दैट शिफ्ट हैपन?
यस यू आर वेरी राइट। एक्चुअली 2008 से ऑनवर्ड 2009 में ब्रांचलेस बैंकिंग के लाइसेंस पाकिस्तान में आ गए थे, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। तो बैंक्स वर लुकिंग फॉर पीपल जिनके पास टेलकोज का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द मोबाइल बैंकिंग तो जाहिर बात है उसके अंदर एक पूरी टेक्नोलॉजी शिफ्ट इन्वॉल्व है। अब बैंकिंग के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जो टिपिकल बैंकर्स थे उनका तो वही कन्वेंशनल बैंकिंग लेगेसी सिस्टम वाला था कि जी अकाउंट कैसे खोलना है, चेकबुक कैसे देनी है, पे ऑर्डर कैसे बनाना है। ये जो टेक्नोलॉजी वाली शिफ्ट है जहाँ पे आप कहते हैं कि यार मैं अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर सब कुछ दूंगा, लोग पैसे ट्रांसफ़र मोबाइल ऐप से कर देंगे, तो वो जाहिर बात है एक टेक्नोलॉजी की पूरी लेग इन्वॉल्व है। तो उसके अंदर जो टिपिकल बैंकर हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है। ऑब्वियसली लोग लर्न करते हैं, लोग सीखते हैं चीज़ें, पढ़ते भी हैं, बट वो जो एक बंदा उस डोमेन से आया हो उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक बंदा जो लर्न कर रहा हो उसके बहुत फ़र्क होता है। तो बैक इन 2012 MCB ऑब्वियसली मोबाइल बैंकिंग में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा था, ब्रांचेस के ऊपर भी काम कर रहा था। तो वहाँ पे आई गॉट अपॉर्चुनिटी, आई ज्वाइंड MCB। वहाँ पे मैंने कोई आई बिलीव 4.5 या 5 साल काम किया है और उसके बाद आई मूव टू फिनका। फिनका इज़ अ माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑब्वियसली, बट आपको पता है कि ब्रांचलेस के अंदर जो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे हैं ही ब्रांचलेस, लाइक जैज कैश आपका, इजी पैसा, दे आर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है ऑन द डिजिटल साइड। बिकॉज ज़ाहरी बात है आपका जहाँ मासेस कस्टमर्स हों, जहाँ आपके आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हों, वहाँ पे आपको जो अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो आपको इनोवेशन है, वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है. सेम गोज़ विद फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, HBL माइक्रो फाइनेंस. वहाँ पे भी माशाल्लाह व्हेन आई जॉइंड तो वो इंडस्ट्री में कोई तीसरे चौथे नंबर पे थे, बट व्हेन आई लेफ्ट दैट बैंक वो नंबर वन माइक्रो फाइनेंस बैंक था. और इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वहाँ पे माशाल्लाह बहुत काम हुआ है, लाइक इन टर्म्स ऑफ वॉलेट्स, इन टर्म्स ऑफ लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ AI बेस्ड लोन, तो वहाँ बहुत काम हुआ है. अब वही चीज़ नेशनल बैंक में, ऑब्वियसली वी आर अ स्टेट एंटिटी, नेशनल बैंक का एक परसेप्शन मार्केट में बना हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 साल से नेशनल बैंक के अंदर बहुत काम हुआ है डिजिटल में और बहुत काम हो रहा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हमारी आप मोबाइल ऐप की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, डेबिट कार्ड्स की बात करें, हमारे ATMs की बात करें, तो माशाल्लाह से वी आर अलाइंड विद द मार्केट. तो अगर आप टॉप 3, टॉप 5 बैंक्स उठाएंगे तो जो प्रोडक्ट फीचर्स आपको डिजिटल साइट पे नज़र आएंगे वो आपको नेशनल बैंक के भी नज़र आएंगे. तो यही है कि आपने जो कस्टमर की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको देखते हुए यू नीड टू कम अप विद दी प्रोडक्ट ऑफरिंग, ताकि आप अपने कस्टमर को मार्केट के साथ रख सकें.
मेक सेंस. मुझे बताएं कि आपने कहा ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस, एक ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस है, एक डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस है, एक मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस, मतलब I'm getting a little confused, right? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक आपके जो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आए थे जिसमें ईजी पैस, तामीर बैंक, जैज़ माइक्रो फाइनेंस बैंक है आई थिंक उनका नाम. तो एक तो ये वाले बैंक्स आए थे विच वर बेसिकली न्यू इंस्टीट्यूशंस पूरे सेट हुए जस्ट फॉर माइक्रो फाइनेंस पर्टिकुलरली. फिर दूसरे लेवल के ऊपर आपके पास वॉलेट्स हैं जो कि मार्केट में बहुत सारे आपको नज़र आते हैं, सादा पे है, नया पे है, और इसका भी जितना मुझे याद पड़ता है इनके भी अप्रूवल से एक प्रोसेस था पूरा. ये यू नो अल्फा मोड में लॉन्च हो गई थी ऐप्स, फिर इनको फाइनली अप्रूवल्स मिले, फिर इन्होंने अपने आप को ओपन किया फॉर पब्लिक. एंड देन मोस्ट रिसेंटली अभी डिजिटल बैंकिंग के सेपरेट लाइसेंसेज आए हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइएगा कि हाउ आर दीज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लाइसेंसेज. एंड दूसरा जो ये मतलब कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि जो अगर नेशनल बैंक लेट्स से डिजिटल बैंकिंग कर रहा है तो वो अपने रेगुलर लाइसेंस के अंडर कर सकता है, जैज़ जो है वो कर रहा है तो वो माइक्रो फाइनेंस, किस तरह से, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल?
ओके ओके. सो अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री इज वर्किंग फॉर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स, लाइक कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान में हमेशा से हैं. इन 2000 गवर्नमेंट डिसाइड किया कि यार जो लोअर साइड ऑफ द सेगमेंट्स हैं, लाइक बहुत आप
लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स कर ले, हाँ,
उनको लोअर मिडिल क्लास जो है वो फाइनेंशियल नेट में नहीं है. लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि बड़े बैंक्स जो भी थे वो छोटे कर्जे, लाइक आप कहें कि जो एक बंदे को 15,000 रुपये का लोन चाहिए तो नोबडी वाज ऑफरिंग दैट. यार आप फॉर एग्जांपल मैं नेशनल बैंक चला गया, मैं HBL चला गया, मैं UBL चला गया, मैंने मुझे 15,000 रुपये लोन चाहिए, तो 15,000 रुपये में बैंक, ज़ाहरी बात है एक पूरा स्ट्रक्चर है, 15,000 रुपये का लोन इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए दे वॉन्टेड टू गो फॉर. तो गवर्नमेंट ने एक नई लाइसेंस टाइप निकाली विच वॉज माइक्रो फाइनेंस बैंक. वो था कि ये वो लोग हैं जिनको आपने छोटे लोन्स देने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज़, कि 25,000 रुपये के बंदे को लोन चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन है, आप चाहेंगे पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा. माइक्रो फाइनेंस दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, एक स्पेशल लॉ के तहत माइक्रो फाइनेंस बैंक्स बने, और उसके बाद 2008-09 में ब्रांचलेस बैंकिंग आया. ब्रांचलेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि यार आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस के ऊपर अगर थोड़ा सा हम वापस आएँ तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जब बनी थी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपने ब्रांचेस खड़ी करनी है. वो ये था कि जी माइक्रो फाइनेंस बैंक होगा, उसके पास एक वैन होगी, वो वैन में जाएंगे डिफरेंट रिमोट एरियाज में जाके लोगों को लोन की सर्विसेज देंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, उनके डिपॉजिट्स लेंगे. बट ऑब्वियसली आपको पता है लुक एंड फील, एक आप क्या कहेंगे उसे,
मतलब ये तो वो वाला टाइम है ना जब आपके मोबाइल फोन्स भी इतने आम नहीं हुए नहीं, तो पहले तो अभी तो ये ना कि इजी पैसा कि आपकी दुकान है तो आपको होता है यार मुझे पैसे निकालने, मैं दुकान से निकाल
चला जाऊंगा.
बट उस टाइम पे तो ये भी कुछ नहीं था
एग्जैक्टली. तो फिर माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने अपनी अपनी ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी, ऑब्वियसली उस वक्त छोटे स्केल पे थी बट ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी. और फिर आया ब्रांचलेस बैंकिंग कि यार लोग अकाउंट खोलने के लिए भी एक ब्रांच में जा रहे हैं. अब जाहिर बात है माइक्रो फाइनेंस बैंक कितनी ब्रांचें खोल लेंगे, लाइक आज भी अगर आप जाएंगे तो किसी बड़े माइक्रो फाइनेंस बैंक की 300-350 ब्रांच होगी, जबकि अगर आप ईयर 2000-2002 की बात करें तो शायद वो ब्रांचें 15-20 होंगी या बहुत हुआ तो 50 होंगी, सारी मिला के भी शायद 100 ना हो। तो अब उन 100 ब्रांचेस के थ्रू आप कितने करोड़ लोगों को कन्वर्ट करेंगे? तो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा ये सेटअप इनिशिएटिव लिया कि जी ब्रांचलेस बैंकिंग होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली इंडिया और बांग्लादेश में हमसे पहले से हो रही थी, कि जी लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपने वॉलेट खोलें, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज इनको शुरू से कहा जाता था। तो उस वक्त आपको याद होगा कि बेसिक फ़ोन होते थे, नोकिया 1100 है, ज़्यादातर लोगों के पास नोकिया 3310 या नोकिया 1100 होता था, तो वो USSD का चैनल यूज़ करते हुए, जिस अगर हम 2009 की बात करें तो ईजी पैसा वॉज़ द फर्स्ट कंपनी, तामीर बैंक तब होता था, जिनको ब्रांचेस का लाइसेंस मिला, उसके साथ MCB को मिला, और उसके बाद ये बाकी जायज़ कैश उनको बाद में मिला। अब सीन ये था कि आपके पास टेलीनॉर की सिम होनी चाहिए, आप एक USSD कोड डायल करेंगे, आप वॉलेट की रिक्वेस्ट करेंगे, आपका वॉलेट खुल जाएगा। उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था कि जी उसका नादरा से वेरिसिस होगा, जो भी आपकी वेरिफिकेशन है वो करके आपका वॉलेट खोल देंगे, खुल गया। डाउन द लाइन इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, बिकॉज इसके थ्रू फिर लोग केटर होना शुरू हो गए। अब वो बंदा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी एक कमर्शियल बैंक की ब्रांच तो लेट से एक एरिया में है ही नहीं, लेकिन एक माइक्रो फाइनेंस बैंक ने आके वहाँ ब्रांच खोली है। अब उस ब्रांच का जो एरिया है उससे एक बंदा 60 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो बेचारा ये तो नहीं कर सकता कि 60 किलोमीटर ट्रैवल करे, वहाँ ब्रांच में जाए, अकाउंट खुलवाए, फिर जब भी पैसे जमा कराने हैं 1000 रुपये वहाँ जाके जमा कराए। तो एक बहुत बड़ा इशू था। चूँकि टेलकोस का एजेंट नेटवर्क ऑलरेडी था अपने स्क्रैच कार्ड के लिए, अपने टॉप अप्स बेचने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2008-2009 के अंदर कोई 4-4.5 लाख से ज़्यादा का रिटेल नेटवर्क ऑलरेडी टेलकोस के पास था, जहाँ पर ये अपने स्क्रैच कार्ड, अपने मोबाइल लोड ये बेचा करते थे। जब एजेंट नेटवर्क बनाना था तो उन्होंने अपने रिटेलर को ही कन्वर्ट किया कि जी चूँकि वॉलेट तो USSD पे खुल रहा है, लेकिन कहीं जा के पैसे जमा भी करवाने हैं, कहीं जा के पैसे निकलवाने भी हैं। फिर ऐसे लोग भी थे जिनके पास वॉलेट भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उन रिटेलर्स को एजेंट बनाया। एजेंट बनाकर उन्होंने कहा कि आपने दो काम करने हैं, एक तो अगर कोई वॉलेट होल्डर आता है तो आपने उसका कैश इन कैश आउट उसको ऑफर करना है, नंबर टू एक बंदा आता है कि यार मेरे पास कोई वॉलेट नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन मैंने किसी को पैसे भेजने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उससे 10,000 रुपये इधर से लिए, उसके साथ उसकी एक फ़ी ली, उस वक्त 4-4.5 रुपये फ़ी होती थी, 10,000 रुपये रिटेलर बी के पास भेज दिए। अब फॉर एग्जांपल मुजम्मिल ने सोहेल मलिक को लाहौर में पैसे भेजने हैं 10,000 रुपये, तो आपसे 10,450 रुपये लेंगे और मेरे CNIC एंड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपको 10,000 रुपये यहाँ से आ गए, आप अपने किसी भी करीबी ईजी पैसा रिटेलर से या एजेंट से जाके पैसे ले लें। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाके अपना CNIC नंबर बताऊँगा, एक मुझे कोड आएगा, वो कोड मैं बताऊँगा तो मुझे वो पैसे दे देंगे। ये प्रोसेस चला। फिर इस प्रोसेस के अंदर जब नज़र आया स्टेट बैंक को भी, लोगों को भी नज़र आया कि यार कन्वीनियंस ऐड हो गई है। अगर इससे पहले आप देखें तो पोस्ट ऑफिस होता था कि आपने कहीं पैसे भेजने हैं तो आप मनी ऑर्डर जाके फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो 3-4 दिन में जाके मनी ऑर्डर मिलता था।
और ये खासकर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी जो रूरल से अर्बन में लोग काम करने आए हुए होते हैं, फैमिलियों को भेज रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा वो।
अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात करें तो आज से नहीं, 1960 से लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ काम करने आए। तो कोई बंदा DG खान से है, कोई बंदा मियांवाली से है, कोई बंदा सखर से है, वो या लाहौर आया हुआ है, या कराची आया हुआ, या इस्लामाबाद आया हुआ है, यहाँ पे या वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, या वो मजदूरी कर रहा है, या वहाँ दुकान बना के बैठा हुआ है, या रेडी लगा के बैठा हुआ है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ है जहाँ से वो है। तो उसने हर महीने जो अर्न करना है उनको भेजना है। इट्स लाइक यू आर वर्किंग इन दुबई, वहाँ से भी आप भेज रहे हैं। तो वो जो भेजने वाला सिलसिला था वो पहले पाकिस्तान पोस्ट पे था। पाकिस्तान पोस्ट के अंदर जाहिर बात है टाइम लैग बहुत ज़्यादा था, फिर बहुत सारे मैनुअल प्रोसेसेस थे। तो उससे बचने के लिए फिर वही एक्सेस बहुत थोड़ी थी कि पोस्ट ऑफिस कितने होंगे पाकिस्तान में, हर बंदे को पोस्ट ऑफिस तक रीच नहीं है। तो जब ये 1-1.5 लाख रिटेलर अचानक से ओपन हुआ कि आप हर गली में जाएं, जिससे आप पान खाते हैं, जिससे आप सिगरेट लेते हैं, उसके पास ईजी पैसा भी अवेलेबल है, जायज़ कैश भी अवेलेबल है, तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ऑल दो उस वक्त ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा था फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए ही, कि आपने यहाँ से पैसे भेजे वहाँ से ले लिए। बट फिर डाउन द लाइन स्टेट बैंक ने पुश करना शुरू किया सारे ब्रांचलेस प्लेयर्स को, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को, यार आप लोगों को सेल्फ इनेबलमेंट की तरफ लेके जाएं और लोगों के वॉलेट खुलवाएं। MCB वाज़ द फर्स्ट वॉलेट इन द इंडस्ट्री जो ओवर द एयर खुलने वाला वॉलेट था, जो आपकी एक मोबाइल ऐप थी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो आपका USSD कोड हो और आपके पास उस टेलको की सिम हो जिस टेलको का वो बैंक है, लाइक तामीर बैंक वॉज ओन्ड बाय टेलीनॉर, तो आपकी टेलीनॉर की सिम होनी चाहिए और फिर आपका तामीर में अकाउंट खुलेगा। लेकिन MCB एक ऐसा बैंक था जिसके पीछे कोई टेलको तो नहीं था, तो हमने मोबाइल ऐप बनाई और हमने कहा कि ओवर द एयर आप अपना वॉलेट खोलें, आपके पास कोई भी सिम है दैट डजंट मैटर, आप मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट भेजें, आपका वॉलेट खुल जाए।
कौन से नाम से चल रहा था?
MCB लाइट।
राइट,
तो MCB वॉज द फर्स्ट वॉलेट जो टेलको अग्नास्टिक था कि आपके पास कोई भी टेलको, टेलनोर, मोबिलिंग, जैज, कोई भी हो तो आप वॉलेट खोल सकते हैं, ओवर द एयर खोल सकते हैं। फिर ये वाला ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया कि जी हर बंदे ने, इवन जो इजी पैसा जायज कैश थे, उन्होंने भी अपनी मोबाइल ऐप से काम शुरू कर दिया। टेलको एग्नोस्टिक हो गया कि ठीक है जी आपका टेलनोर की सिम नहीं भी है तो आप जायज की सिम के साथ भी वॉलेट खोल सकते हैं। और फिर स्टेट बैंक ने बहुत एक्टिवली काम किया, अपनी रेगुलेशन में जहाँ जहाँ चेंजेस चाहिए थी वहाँ चेंजेस की, जहाँ जहाँ फैसिलिटेशन चाहिए थी वहाँ फैसिलिटेशन। ऑब्वियसली आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको सामने रखते हुए स्टेट बैंक को अपनी चीज़ें प्रोएक्टिवली देखनी है। तो उसमें स्टेट बैंक हमेशा बड़ा लीडिंग रोल में रहा है कि जी कस्टमर फैसिलिटेशन भी हो, चेक एंड बैलेंस भी हो, कोई वॉयलेशंस भी ना हो। लोग जारी बात है आप मनी लॉन्ड्रिंग को ले लें, FATF के लॉज को ले लें, तो उनको भी सामने रखना है। तो उससे ये हुआ कि अपटेक ऑफ वॉलेट्स बढ़ना शुरू हो गया। लाइक 2013 में वी लॉन्च्ड कमर्शियली MCB लाइट, और फिर ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे 14, 15, 16, 17 ऑनवर्ड वॉलेट का अपटेक बहुत बढ़ा। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो OTC ट्रांजैक्शन है जो एजेंट की शॉप पे हो रही हैं वो वॉलेट से बहुत पीछे रह गई हैं, जबकि अगर आप 2013-14 से पीछे जाएं तो आपको नज़र आता था कि यार OTC ट्रांजैक्शंस 90% हैं, सिर्फ 10% ट्रांजैक्शन हैं जो लोग वॉलेट से करते हैं, क्योंकि बड़ा इजी था यार, गया पैसे पकड़ाए वापस आ गया, गया बिल पकड़ाया वापस आ गया।
सो ये तो आपने ब्रांचलेस बैंकिंग बताया। डिजिटल में जो आपने कहा कि डिजिटल बैंक्स आ गए और मोबाइल बैंक्स आ गए,
जी जी, जो आपकी मोबाइल ऐप है उसके लिए कोई अलग लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, वो आपकी बेसिक मोबाइल अकाउंट सर्विसेज हैं जो आपने मोबाइल ऐप पे दे दी। तो आपने एक मोबाइल ऐप बनाई, आपने वो इनहाउस बनाई या किसी वेंडर के थ्रू आपने बनाया, उस पर आपने कस्टमर को सर्विस देनी, उसमें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जाहिर बात है आप एक कस्टमर को ओवर द एयर एक्सेस दे रहे हैं, उसको सारी फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज दे रहे हैं, बिल पेमेंट, तो वहाँ जाहिर बात इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एंगल है। फिर आता है आपका ये जो ब्रांचलेस की हमने बात की, यहाँ पे जारी बात है लिमिट्स इन्वॉल्व्ड हैं कि वहाँ पे इनिशियली जो लेवल ज़ीरो था उसके ऊपर 25,000 रुपये महीने की लिमिट थी, फिर लेवल वन होता था, फिर लेवल टू होता था, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको 2,00,000 रुपये पर मंथ की लिमिट मिलती थी। देन केम अप स्टेट बैंक केम अप विद एन आइडिया कि जी इससे बड़ा वॉलेट होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन आई, EMI जिसको कहते हैं, वो एक नई लाइसेंस टाइप बनी जिसमें उस वॉलेट की लिमिट बड़ी की गई। इसमें कहा गया कि वो लोग जिनको वॉलेट चाहिए उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो वहाँ 4,00,000 रुपये की लिमिट लग गई। आज जैसे आपको नज़र आता है सादा पे, नया पे, ये सारे EMI इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पे जो वॉलेट है उसकी लिमिट्स ब्रांचलेस वॉलेट से बड़ी है। अभी जैसे आप डिजिटल बैंक की बात करें तो डिजिटल बैंक जो है वो एक फुल फ्लेज बैंक के तौर पर आ रहा है विदाउट द ब्रांचेज नेटवर्क। तो होगा ये कि एक फुल फ्लैज बैंक होगा जस्ट लाइक नेशनल बैंक, MCB, UBL, HBL बैंक होगा, लेकिन वो ब्रांचों के बगैर काम करेगा, वो अगेन ओवर द एयर ब्रांचलेस टाइप पे काम करेगा। ऑब्वियसली उसकी एक अलग मार्केट है जिसके अंदर लोग डिजिटली काम करना चाहते हैं, डिजिटली लेट से लेंडिंग लेना चाहते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, कोई ऑटो लोन लेना चाहते हैं। फिर इनकी स्पेसिफिक मार्केट्स हो सकती हैं जहाँ पे कोई बैंक डिसाइड करता है कि जी हम SME सेगमेंट को सर्व करेंगे, कोई बैंक डिसाइड करता है कि यार हम जो सैलरी क्लास है उनको सर्व करेंगे। तो ये एक अलग एंटिटी टाइप है जिसके अंदर 5 लोगों को अभी प्रिंसिपल अप्रूवल मिला हुआ है, दे आर वर्किंग ऑन दी कमर्शियल साइड। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल से 2 साल के अंदर कमर्शियली उसको लॉन्च करेंगे।
और जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं अगर उन्होंने लिमिट्स बढ़ा के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ईजी पैसा अकाउंट को लेवल 2 के बाद अगर उसने अपग्रेड होना है अपने आप को, तो जब तक आई डोंट नो उनको लाइसेंस मिला या नहीं मिला, लेकिन अज्यूमिंग अगर नहीं मिला होता तो जब तक लाइसेंस नहीं है डिजिटल बैंकिंग का, तो वो पे वो 4,00,000 पे ही लिमिट है, 4,00,000 से ऊपर नहीं जा सकता।
देखिए जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनके पास बेसिक बैंक अकाउंट जो हैं, जो कि आपका कन्वेंशनल बैंक अकाउंट है, वो तो आज भी अवेलेबल है।
अच्छा, वो आज अवेलेबल।
अगर आपके पास ब्रांचलेस बैंकिंग वॉलेट है और आप कहते हैं कि यार मेरी 2,00,000 रुपये लिमिट कम है, मुझे तो महीने का 10,00,000 रुपये आएगा, तो आप सिंपल उनकी ब्रांच में चेक इन करेंगे, आप कहेंगे या उनकी ऐप से ही आप कहेंगे कि यार मुझे
अकाउंट प्रॉपर अकाउंट आपको
बिल्कुल, तो वो आपका KYC करके जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मुझे महीने का 10,00,000 रुपये मेरी नीड है, तो ऑब्वियसली आपने प्रूव करना है कि ये 10,00,000 रुपये मेरा कहाँ से आएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में FATF और AML ये काफ़ी बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। तो बैंक्स आर हैप्पी टू सर्व एवरी कस्टमर, लेकिन उस कस्टमर ने अपनी लिजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम बतानी है कि यार ये जो मैं आपके पास 1 करोड़ रुपया लेके आया हूँ या 10,00,000 रुपया लेके आया हूँ, मैंने कहाँ से लिया है। आपको पता है वो पास्ट में बड़े इस तरह के इवेंट हुए हैं, तो वो अपने बताएगा और अपना अकाउंट खुलवा लेगा, अब उसकी कोई लिमिट नहीं है.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज के व्हाट्स द डिफरेंस देन बिटवीन ए माइक्रो फाइनेंस लाइसेंस और एन ईएमआई लाइसेंस एंड अ डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस. बिकॉज थियोरेटिकली आपने कहा कि एज लॉन्ग एज आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराई तो आपका उस केस में भी खुल रहा है. वेयर एज नाउ देयर इज अ डिजिटल बैंक जो कि असेंशियली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज डूइंग द सेम थिंग, या उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर सेट्स हैं जो कि लेट्स से लेंडिंग की प्रोडक्ट्स हैं या वो हैं जो कि उसमें हो सकती हैं, इसमें नहीं हो सकती. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ?
देखिए, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल बैंक और कमर्शियल बैंक और ईएमआई, ये अलग अलग टोटल एंटिटीज हैं. जो माइक्रो फाइनेंस हैं उनके ऊपर कुछ कैविएट्स हैं कि यार इस सेगमेंट ऑफ द मार्केट को ही आपने सर्व करना है, इससे आगे आपने सर्व नहीं करना. इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, डिपॉजिट एनीबडी कैन ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट विद देम. कोई बिलियनर आदमी भी वहाँ अकाउंट खोल सकता है और एक आम आदमी भी जाकर ड्राइवर भी खोल सकता है. जब आप डिजिटल बैंक की बात करें तो दे आर जस्ट लाइक अ कमर्शियल बैंक. लाइक जिस भी डिजिटल बैंक को लाइसेंस मिला है वो एक कमर्शियल बैंक के तौर पे ऑपरेट कर सकते हैं. माइक्रो फाइनेंस की तरह उनके ऊपर लिमिट नहीं है कि यार इतना लोन से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते. डिपॉजिट भी वो ले सकते हैं एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक की तरह. हाँ, वो किस सेगमेंट ऑफ द मार्केट को स्पेसिफाई करके उसको सर्व करना चाहते हैं, ये सारी बातें उनकी स्ट्रेटजी पे है कि जी सारी बात है. आप देखें, आप इस वक्त मार्केट में कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स काम कर रहे हैं, ईएमआई काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो रही है, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही हैं. अब ये डिपेंड करता है उस बैंक की जो मैनेजमेंट है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि जो स्ट्रेटजी क्या लेना चाहते हैं कि यार किस सेगमेंट ऑफ द मार्केट को हम फोकस करेंगे टू मेक मनी, टू मेक आर सेल्फ सक्सेसफुल. ये वक्त बताएगा हमें, साल डेढ़ साल में
रहेगा. आपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात की, दैट्स बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान नाउ. ओवरऑल डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग में तो ये मोर सो है बिकॉज जस्ट दी शेयर अमाउंट ऑफ स्कैम्स. एंड अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, फ्रेंड ऑफ माइन गॉट स्कैम्ड एज वेल. वो बड़ा एलैबोरेट हो चुका है वो स्कैम जो है ना, वो आपको कॉल भी करते हैं तो वो क्या कहलाता है वो, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट वो बैंक के ही नंबर को स्पूफ करके वो आपको कॉल कर रहे होते हैं
सुबह.
वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इंट्रिकेट और एडवांस्ड हो चुका है उनका, कि वो सोशल इंजीनियरिंग भी की हुई होती है, व्हाट्सएप पर भी कोऑर्डिनेट हो रहा होता है. तो मोर ऑफन देन नॉट जो है वो आपका जो खासकर जो ओल्डर जनरेशन है वो बड़े आराम से कर जाती है,
शिकार बन जाते हैं.
इसमें पहला तो मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी दैट लैंडस्केप, बिकॉज अब तो ये, और ये सिर्फ, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है. मतलब हम हमेशा हम लेते हैं कि यार हम बहुत इसमें आगे हैं इस तरह की चीज़ों में, बट जब से मैं दुबई गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस. अभी यार रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट स्कैम्ड 40,000 dirhams. पाकिस्तान में तो स्कैम होते हैं तो 2-3-4 lakh रुपया जाता है, वहाँ पर तो इन अ मैटर ऑफ 6 hours शी लॉस्ट 40,000. बट इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. एंड एक तो ये कि स्कैम्स की प्रॉब्लम है और वहाँ पर भी बैंक्स ने कम्पीट करना है, दूसरी तरफ जो है वो आपका वो है डेटा का ओवरऑल प्रॉब्लम है, डेटा लीक्स का प्रॉब्लम है. पिछले दिन हमने सुना कि जी किसी बैंक का जो है वो सारा डेटा लीक हो गया और यू नो इट बिकेम अ ह्यूज थिंग. नादरा का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है 2-3 websites के ऊपर, सेलफोन का डेटा आपका बड़ा ईजिली अवेलेबल है. मतलब ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में. इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि हमारे पास एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो टैलेंट अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में जो हम इन हाउस ये कर सकें. तो क्या ग्लोबली हम प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं उसमें कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट्स एज ऑफ राइट नाउ ओवरऑल इंडस्ट्री में, आर वी ऑन पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो इस वक्त चल रहे हैं?
देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं. एक है जैसे आपने बात किया सोशल इंजीनियरिंग जो लोगों के साथ बहुत बड़े स्केल पे हो रही है. एक है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर द बैंक्स और फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आपने आज तक कभी भी ये नहीं सुना होगा कि यार किसी बैंक का सिस्टम ऐसे हैक हो गया कि बैंक का पैसा निकल गया, ऐसे नहीं सुना होगा आपने, बहुत रेयर सुना होगा. फिर जब आपने सुना भी होगा, जब आप उसको जाके प्रॉब करते हैं, आप देखते हैं कि नहीं यार एक्चुअली सिचुएशन कुछ और थी. सो व्हाट हैपन्स इज कि जब भी कोई बैंक अपनी डिजिटल सर्विसेज ऑफर करता है फॉर कस्टमर्स, तो उसके पीछे पूरा एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैकेनिज्म होता है जो कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है, फॉल्स ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करता है, तो वो सारे चेक एंड बैलेंस वो लगाते हैं. कहाँ पे ये जाके लूज बॉल कहाँ पे होती है, वो होती है सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर. होता ये है कि आपको पता है कि इंसान जो है बाय नेचर थोड़ा सा ग्रीडी है. तो आप जितने भी स्कैम देखेंगे वहाँ कोई ना कोई ग्रीड का एलिमेंट ज़रूर है। लाइक एक बंदे को कॉल आई कि जी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, आपके उसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं। अब ये बड़ा एक एंगल है, लोग सोचते हैं कि यार इसको कैसे पता चला मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, लोग जॉब स्विच करते हैं, मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, कल मैं कहीं और काम कर रहा हूँ। जाहिर बात है अगर कोई बंदा कॉल सेंटर में कहीं काम कर रहा है, किसी ब्रांच में काम कर रहा है, तो उन कुछ कस्टमर्स को सर्व करता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मुजम्मल हुसैन का नंबर लिख लिया, गया इनके पास पैसे पड़े हुए, मेरे पुराने कस्टमर हैं, मैं वहाँ से छोड़ के गया, या मेरा कोई जानने वाला है, या मैं खुद हूँ, अब गॉड नोज वो कर एक्चुअली कौन रहा है। तो उसने कॉल किया। अब स्पूफिंग आपको पता है बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में है। अगर आप एज अ कंज्यूमर नंबर को गौर से देखेंगे तो 100% उसके अंदर ओरिजिनल नंबर उसमें डिफरेंस होगा, वो चाहे एक ज़ीरो का हो, चाहे एक प्लस का हो, चाहे एक डॉट का हो, चाहे एक डैश का हो। अगर कहीं नंबर आ रहा है 02111111111, एक्चुअल नंबर ये है, और वहाँ से कॉल आ रही है 02111111, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक डिजिट डिफरेंट होगा, या तो पहले प्लस लगा होगा, या पहले 00 लगा होगा, 021 के बजाय 0021 लिखा होगा, इस तरह से हाउ इट वर्क्स। जब कॉल आ गई तो सबसे पहला आपको फियर देते हैं कि जी आपका अकाउंट बंद होने वाला है, हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अपना लॉगिन करें और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लें। अब अगेन यहाँ पे कस्टमर को समझने वाली बात है कि वो कॉल बंद हो तो वो या तो अपनी हेल्पलाइन खुद कॉल कर ले कि जिस तरह मुझे कॉल आई है मुझे क्या करना चाहिए, या ब्रांच विजिट करना चाहता है वो कर ले। लोग क्या करते हैं कि फेक वेबसाइट लाइक nbp.com.pk हमारी वेबसाइट है, nbp.com एक वेबसाइट का लिंक आ गया। अब जब खोला तो लुक एंड फील भी वही आ रहा है, नेशनल बैंक का लोगो ऊपर लगा हुआ है, एक सिंपल फॉर्म खुला हुआ है। उन्होंने कहा जी अपना यूज़र नेम डालें, तो मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा, या पासवर्ड डालें तो मैं अपना अब ये पासवर्ड उनके पास सामने तो नेकेड है ना, बिकॉज वेबसाइट वो मैनेज कर रहे हैं, डेटा सारा वो एंटर करा रहे हैं। तो होता ये है कि वो आपका यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे ले लेते हैं। अब उन्होंने ले लिया। अब सो स्टेट बैंक ने जो रिसेंट रेगुलेशन हैं ऑन दी डिजिटल फ्रॉड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ऐड की हैं, लोगों की कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत चीज़ें ऐड की हैं। तो अभी भी अगर मैं आपको एग्जांपल छोटी सी एक दो चीज़ों की एग्जांपल देता हूँ कि आप नया फ़ोन ख़रीदते हैं, वहाँ पे अपनी मोबाइल ऐप आप रजिस्टर्ड करते हैं, तो 2 घंटे का आपको एक कूल ऑफ पीरियड है उसके ऊपर कि आपने मोबाइल ऐप बना ली, रजिस्टर्ड कर ली, जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि आप 2 घंटे बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे फैक्टर क्या है कि आपको एक SMS आएगा कि जी आपने सक्सेसफुली अपनी मोबाइल ऐप रजिस्टर्ड कर ली है। अब अ कंज्यूमर हैज़ 2 आवर्स कि वो कॉल बैक कर ले अपने बैंक को कि यार ये मैंने तो रजिस्टर नहीं किए, ये मुझे मैसेज आया है मेरी मोबाइल ऐप रजिस्टर्ड हुई है, ये मैंने नहीं किए, तो वो क्या करेंगे, वो बैकएंड से उसको ब्लॉक कर देंगे। लोग उसको इग्नोर करते हैं। असल में जब से व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है ना, तो SMS पीछे चला गया है। अब अगर आप कभी अपना SMS खोलते हैं तो आप देखते हैं अनरेड SMS बहुत सारे पड़े होते हैं, बिकॉज वो हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं रहे हैं, हमारी रूटीन से हट गए हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने SMS, अपनी ईमेल, स्पेशली वो SMS वाला नंबर जो आपने बैंक को दिया हुआ है, स्पेशली वो ईमेल जो आपने बैंक में रजिस्टर्ड की हुई, उसको फ्रीक्वेंटली देखते रहे।
व्हाट्सएप अकाउंट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे बैंक्स, क्योंकि बाहर तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि आपने इवन कोड मंगवाना है तो अब आपको ऑप्शन देता है कि यार टेक्स्ट मैसेज मंगवाना है या व्हाट्सएप पे मंगवाना है, क्योंकि वो व्हाट्सएप आपको API देकर कमर्शियल वो देता है।
देखिए 2-3 फैक्टर हैं। पहली बात यह है कि आप आज के दिन पे अगर बात करें कंज्यूमर की, तो 100% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल विद द बेसिक फ़ोन, तो बेसिक फ़ोन तो एंड्रॉयड से वैसे भी हट जाता है। फिर जब आप एंड्रॉयड इस पे आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइसिंग है वो बहुत इनसेनली महंगी कर दी है। लाइक आज आपको एक जो उनका मैसेज है वो 4-5 सेंट का पड़ता है। 4-5 सेंट का मतलब है पाकिस्तानी वैल्यू ऑफ मनी। जबकि आप OTP की अगर बात करें, ऑल्दो इस ट्रेंड को देखते हुए टेलकोज ने भी अपना SMS का रेट बहुत बढ़ा दिया, आपको बैंक को कोई 3-4 रुपये का एक SMS पड़ता है। ये दूसरा फैक्टर ये है। अब जब आपका SMS सर्विस है तो वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट उस टेलको की सर्विस है,
राइट।
जबकि जो आपका व्हाट्सएप है वो एक बाइनरी सर्विस है बाय सम अदर थर्ड पार्टी। तो आपका मोबाइल नंबर मैं अपने व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, और आपको पता है जब से उन्होंने वो डुअल या मल्टीपल डिवाइसेस पे ऑन किया है, तो लोगों के साथ ये वाले स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप लोग हैक कर लेते हैं, आपका व्हाट्सएप कोई और यूज़ करना शुरू कर देता है, आपको पता है। तो इसलिए भी बैंक थोड़ा सा इसको अभी इंफॉर्मेटिव साइड पे तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एंटिटी या आप समझ लें कि अथेंटिकेशन टाइप है उस पर नहीं जा रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपना ईमेल, अपना एसएमएस फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। जैसे ही आपको एक एसएमएस आया कि जी आपने रजिस्टर्ड किया और आपने नहीं की, फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें बैंक को, जो लोग नहीं करते हैं। होता क्या है, अब इस सारे के बाद 2 घंटा गुजर गया, आपने नहीं कॉन्टैक्ट किया, जब आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने लगेगी तो आपको बैंक एक ओटीपी भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड। अब आपको वो जो फ्रॉडस्टर है वो दोबारा कॉल करता है कि जी मैंने एक ट्रांजेक्शन की है, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, अभी आपको एक पेन आएगा, वो आपने मुझे बताना है। अब अगर आप ओटीपी भी पढ़ेंगे तो उस ओटीपी में लिखा होता है कि जी आपने फंड ट्रांसफ़र किया है, उसको कंफर्म करने के लिए ओटीपी है। अगेन वो लोग नहीं पढ़ते हैं, बता हाँ जी लिखें जी 4567, उन्हें डाला, पैसे चले गए। अच्छा, फिर जब वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर भी एसएमएस आता है कि जी आपके ये 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो गए। अब अगेन जब तक आप चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, लोग नहीं देखेंगे, तो ये स्कैम आपके साथ होते रहेंगे। तो विजिलेंट रहना लोगों को चाहिए कि नंबर को बड़े गौर से देखें कि जो कॉल आ रही है वो नंबर का पैटर्न क्या है। फिर सबसे बड़ी बात है, हर बैंक डिफरेंट एड्स में कहता है कि हम अपनी इस हेल्पलाइन के नंबर से कभी कॉल बैक नहीं करते, वो कॉल, वो नंबर हमारा सिर्फ कॉल इन के लिए है, यहाँ से हम कॉल बैक नहीं करते। फिर बार बार स्टेट बैंक भी और सारे बैंक लोगों को बताते हैं, हम आपसे कभी ओटीपी नहीं पूछते, हम आपसे कभी पासवर्ड नहीं पूछते, हम कभी आपसे यूज़र आईडी नहीं पूछते। तो लोग जब ये इग्नोर करते हैं तो ये स्कैम्स होते हैं, फिर लोग लुट जाते हैं। तो अगर लोग ये विजिलेंट रहें, अपनी चीज़ों को ध्यान से देखें, लोगों से अपने पासवर्ड, अपने ओटीपी शेयर ना करें, तो ये वाकयात नहीं हो सकते हैं।
राइट, एंड जो अल्टरनेट दूसरी साइड है कि जो बैंक की अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है,
जो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको रेयरली कोई इवेंट सुनने में मिलेगा कि यार फलां बैंक का सिस्टम हैक हुआ और बैंक का सारा पैसा निकल गया।
Right.
ऐसा नहीं होता। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसी वाला एलिमेंट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी बैंक ने अपनी मोबाइल ऐप्स की, अपनी इंटरनेट बैंकिंग की सिक्योरिटी उतनी टाइट ना रखी हो जितनी वो रिक्वायर्ड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जब से ये सर्कुलर 4 आया है फ्रॉम द स्टेट बैंक, सारे बैंकों ने इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम किया है और सारे बैंकों के जो मोबाइल ऐप्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी चेक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेड हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सिस्टमेटिकली आप कहेंगे कि यार कोई सिस्टम लूज था जिस वजह से पैसे निकल गए। सोशल इंजीनियरिंग वाला ही इम्पैक्ट है। या एक और चीज़ है, मैंने एक और चीज़ नोटिस ये की है कि लोगों के जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके अंदर से बड़े फ्रॉड होते हैं कि मेरे अपने किसी कज़न ने, मेरे अपने किसी दोस्त ने मेरा फ़ोन लिया जिसके ऊपर उसने अपना बायोमेट्रिक भी रजिस्टर्ड किया हुआ था, वहाँ से उसने ट्रांजैक्शन कर ली। ऐसा होता है, कस्टमर जेन्युइनली कंप्लेन करता है कि जी मेरी ये कंप्लेन ट्रांजैक्शन हो गई है, जबकि जब आप प्रॉप करते हैं पता लगता है जी उसी का भाई था, डेबिट कार्ड के लेके गया, पैसे निकाल लिए, मोबाइल ऐप यूज़ कर ली। ये भी होता है।
राइट, आपने स्टार्ट में जिक्र किया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, और आपने उसमें पर्टिकुलरली यू स्पोक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो बिजनेस यू नो जनरली जो डे टू डे बिजनेस हो रहा होता है किसी भी कंपनी का, बट पर्टिकुलरली बैंकिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंज्यूमर ज़्यादातर ये सोच रहे होते हैं कि यार मोबाइल ऐप आ गई, हमारा जो टच पॉइंट है डिजिटल वो किस हद तक आ गया। विद इन द बैंक, बिकॉज यू आर यू बिन पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल में ही ज़्यादातर हुई है, How extensive has that been? Because as per my understanding, 90s or early 2000s वाला भी जो बैंकिंग है वो बड़ा डिफरेंट था, वो बड़े बेसिक सॉफ्टवेयर थे, उस पर सारा चलता था। आज का जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक डिफरेंट है?
देखिए, बहुत ज़्यादा काम हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल काम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा काम और होने वाला है। आप एज अ बैंक, अगर आप पूरी बैंकिंग को समझें तो बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट 2 ट्रांजेक्शन्स, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। आप या पैसे किसी को दे रहे होते हैं या किसी पैसे ले रहे होते हैं। तो आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इन्हीं 2 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बनी हुई है। आप क्रेडिट कार्ड देखेंगे, आपको क्रेडिट दे रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। डेबिट कार्ड है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप डेबिट करवा के उसको यूज़ किए जा रहे हैं। इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, दैट्स कॉल्ड इनोवेशन। क्या आपने यार पहले होता था कि जी चेक लिखा, आपको याद होगा अर्ली 90s तक आप जाते थे, एक बैंक का पूरा रजिस्टर उठाते थे, उसमें से आपका नाम निकालते थे, आपका चेक के साथ साइन मैच करते थे, फिर वहाँ एंट्री करते थे, हाथ से लिखते थे कि ये 10,000 रुपये निकाले हैं, बाकी बच गए जी 80,000 रुपये वहाँ लिखती। यही चीज़ इनोवेट हुई, कोर बैंकिंग सिस्टम्स लग गए, वहाँ पे एक्सेस मिल गई हर ब्रांच के अंदर, तो वहाँ एंट्री होना शुरू हो गई, वहाँ से पैसे फिर ATM मशीन्स आ गई, फिर डेबिट कार्ड्स आ गए, फिर मोबाइल ऐप्स आ गई। तो ये सारे का सारा क्या हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं, वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं। आप जब भी कोई बात करते हैं कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजिकली वो पॉसिबल है कि यार ये काम मैं पहले मैन्युअली करता था, अब मैंने उसको ऐसे करना है। वे ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप डेबिट क्रेडिट दो सर्विसेज आप कस्टमर को देते हैं, इसके अलावा आप एज अ बैंक क्या करते हैं, आप स्टाफ हायर करते हैं, आप स्टाफ को ट्रेन करते हैं, आप स्टाफ को प्रमोट करते हैं, स्टाफ का एक पूरा एक जॉब साइकिल है, पूरा एक
एचआर का
प्लान है सारा, ये सारे का सारा आपने ट्रांसफॉर्म करना है। आपने देखना है कि यार कितने एलिमेंट्स हैं आपकी उस पूरी डे टू डे बिजनेस के अंदर जहां आपकी मैनुअल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जहां आप रिपीटेड एक ही काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जितना आप ट्रांसफॉर्म करेंगे वो इनोवेशन आपकी इम्प्लॉई लाइफ को बेहतर करेगी। एक बंदा है जिसका फॉर एग्जांपल काम है जी एक डेटा उसने देखना है, डेटा देखकर उसने वैलिडेट करना है, हाँ ठीक है यार ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सिस्टम बेस्ड फॉर्म है, दोनों ओके हैं, अकाउंट आप एलिवेट कर दें या आप अकाउंट को ओके कर दें। अब यही चीज़ें चैट आपके बॉट्स आ गए हैं, आपके आरपीए प्रोसेस आ गए, आप वहाँ पे बॉट लगा देते हैं, वो सिंपल डेटा मैच करता है, आपका अकाउंट ओके कर देता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से हो रही है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और मैं समझता हूँ कि अगले 5-10 साल में जितने बैंक्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म, अपने आप को डिजिटाइज नहीं करेंगे कम्प्लीटली, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट होते जाएंगे। बिकॉज अब जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और टर्न अराउंड टाइम्स की एक्सपेक्टेशन हैं वो बहुत आगे चली गई हैं। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आपने पैसे भेजे फिर आप आधे घंटे बाद कन्फर्म करें कि यार पैसे आपको मिले हैं या नहीं मिले। अभी बड़ा सिंपल है, ब्लिंक ऑफ एन आई आप पैसे भेजें, ठक करके अगले को मैसेज आता है जी पैसे आपको मिल गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हर कॉर्नर ऑफ द बैंक में होनी है। एचआर ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, आपके इंटरनल प्रोसेसेस की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, आप अकाउंट खोलते कैसे हैं। अब देखिए एक वक्त होता था जब आप अकाउंट खुलवाने जाते थे पूरे एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिए, साथ शादी कार्ड कॉपियाँ लगाई, अब आप ब्रांचों में जाएँ तो आपका जर्नी स्टार्ट ही बायोमेट्रिक से होता है, आप बायोमेट्रिक करते हैं आपका डेटा नादरा से ऑटोमेटिकली आ जाता है, वहीं पे आपका डेटा पॉपुलेट होता है, आपसे बाकी जो केवाईसी की इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है, रियल टाइम पे आपकी वहीं पिक्चर होती है, रियल टाइम पे एक प्रिंट निकलता है, रियल टाइम पे आप साइन करते हैं, रियल टाइम पे अकाउंट खुल जाता है। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी जो आपकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग है वो इसी का अगला वर्जन है कि आप यहां बैठे हुए मोबाइल ऐप के ऊपर, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर बैठ के आप अकाउंट खोल सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग है या डिजिटल, आपने कहा कि जी अकाउंट इमीडिएटली खुल जाता है पाकिस्तान में, माई अंडरस्टैंडिंग इज नो बडी हु इज डूइंग इट इमीडिएटली, तो बहुत ही दूर की बात है। ऑनलाइन आप डालते हैं नॉर्मली 3-5 दिन लगते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में सारा कुछ, उसकी क्या वजह है? मतलब ये क्या मैनुअली एक एक करके हो रही होती है? क्योंकि अगर अगेन मैं इसमें बाहर देखूँ विद वेरी सिमिलर KYC, तो अब तो वो जो है ना वहाँ पर ये तक हो रहा है कि आपका वो आप आईडी कार्ड डालेंगे सामने, वो उसी वक्त उसको खुद से रिकग्नाइज़ करेगा, वो उसी वक्त टेक्स्ट को पढ़ेगा, वो उसी वक्त पीछे से जो है ना उसको वेरीफाई करेगा। 99% जो है वो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका होता है। वो बहुत छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं कि यार उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी कंपनी है, कंपनी का लाइसेंस है, वो भी गवर्नमेंट के पास डेटा पड़ा हुआ है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। अगर आपका जो है वो आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ है, तो थियोरेटिकली वो ऑटोमेट कर सकता है। हाँ, अगर कोई लेट्स से सैलरी स्लिप है या ये है वो है, तो एक ही दुखी डॉक्यूमेंट को वो आप फर्दर मैनुअल वेरिफिकेशन भेज सकते हैं। जो इसमें टाइम का डिले आता है या टाइम का लैग आता है, ये क्या वजह है इसकी कि 3-4 दिन, कभी कभार पूरा पूरा हफ्ता जो है वो डिफरेंट ऐप्स यू नो आपको वेट कराती हैं?
देखिए बड़ा सिंपल है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट यू आर ओपनिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि आप ब्रांचलेस का अकाउंट खोलने लगे, अभी आप सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठक करके अकाउंट खोलें, पैसे डालें और यूज़ करना शुरू कर दें, देन इट कम्स दी बिगर अकाउंट्स जहाँ पे आप कह रहे हैं कि यार मुझे 10 करोड़ रुपए मेरे पैसे इसमें आएंगे, तो जाहिर बात है उसके साथ आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है कि यार ये पैसे कहाँ से आएंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करते हैं, सैलरी क्लास हैं या बिजनेसमैन हैं या लैंडलॉर्ड हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो होता यह है कि कस्टमर से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो मिसिंग होती है। स्टेट बैंक आपके डिजिटल ऑनबोर्डिंग में कहता है कि जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो बैंक ने 72 आवर्स में अकाउंट खोलना है। आप किसी भी केस को प्रॉप करके देख लें, उसको कस्टमर को जो भी उसकी एक मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन है या मिसिंग क्राइटेरिया के ऊपर जो भी चीज़ आती है उसको इन्फॉर्म हो जाती है लाइक विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स या मैक्सिमम 1 डे में उसको पता चल जाता है यार आपने ये जो चीज़ें दी हैं इसमें आपकी सैलरी स्लिप मिसिंग है या आपने नहीं दी है। अब वो कस्टमर जब तक सैलरी स्लिप या वो जो लैंड के डॉक्यूमेंट या जो भी मांगा गया है वो जब तक नहीं देगा वो प्रोसेस आगे चल ही नहीं सकता। होता यह है कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी और बस मेरा अकाउंट खुल जाएगा। जबकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे वो प्रोसेस आगे चल नहीं सकता है। तो इसके अंदर भी मैं अगेन कहूँगा कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको चाहिए कि जब वो किसी अकाउंट को प्रोसेस में डालते हैं तो बड़ा एक्टिवली, जैसे हमने फ्रॉड वाली बात की कि अपनी ईमेल चेक करें, एसएमएस चेक करें, बड़ा एक्टिवली चेक करें कि यार ईमेल पे मुझे रिस्पॉन्स क्या आया है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एलिवेट एक ऐप है जो आपका US में अकाउंट खोलती है। आप वो क्लेम करते हैं कि हम 2 to 3 days में आपका अकाउंट प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन आप खुद ट्राई करके देख लें उनको 8 से 10 दिन लग जाते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया से सारी बात है अकाउंट खोल रहे हैं लोग। अगर आप जैसे हम अभी बात कर रहे थे पाए कॉइन की जब आप KYC करने जाते हैं तो अगेन यही वाला प्रोसेस होता है कि वो आपका टाइम लेते हैं, बिकॉज वो आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं, आपके साथ जो जो डॉक्यूमेंटेशन लगाई वेरीफाई कर रहे हैं। तो इट्स अ प्रोसेस। 72 आवर्स का स्टेट बैंक ने एक टैट दिया हुआ है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो विद इन 72 आवर्स आपका अकाउंट खुलना चाहिए। और
इस वक्त नेशनल बैंक में ये ऑप्शन है कि मैं ऐप डाउनलोड करूँ, लेट्स से आफ्टर दिस पॉडकास्ट, और मैं उसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करूँ तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा।
जी जी बिल्कुल, आप हमारी मोबाइल ऐप पे अकाउंट खोल सकते हैं, हमारी इंटरनेट बैंक हमारा जो वेब पेज है वहाँ जाएं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो दें और आप डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं।
और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो ये मसला आ रहा था कि यार सिर्फ सैलरीड क्लास ही खुल पा रही थी, क्योंकि बाकी लोगों का जो है ना वो कहीं ना कहीं KYC में प्रॉब्लम आया था। खवातीन जाती थी तो उस पर वो इवन बैंक जाते थे तो एक टेंशन होती थी जी, हस्बैंड से लेटर ला के दें तो ये ला के दें वो ला के दें, तो खवातीन की फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा प्रॉब्लम था। फिर स्टूडेंट्स का बड़ा मसला आना शुरू हो गया, फ्री लांसर्स का पर्टिकुलरली, क्योंकि फ्री लांसर्स आर नाउ मूविंग अमाउंट्स जो कि आपकी मोबाइल वॉलेट से एसेंशली डील नहीं कर सकते,
कवर नहीं कर सकते,
$1,000-$2,000 वो आ रहा है। उनकी प्रोविजंस हैं इसके अंदर, और अगर हैं तो वो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी?
जी बिल्कुल, देखें जैसे अभी हमने बात की डॉक्यूमेंटेशन की, जब आप फ्री लांसर की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग विद सम एंटिटी, लाइक ओ डेस्क पे कोई काम कर रहा है, कोई फ्री डेस्क पे काम कर रहा है, तो वहाँ से उनकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो कोई ईमेल होगी कि यार प्रोजेक्ट आपको दिया है, कोई प्रोजेक्ट अवार्ड का कोई लेटर होगा, कुछ होगा। तो बैंक एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग पूछता है कि यार जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका हमें एक प्रूफ दे दें। फिर जो आपकी लास्ट कोई भी पेमेंट आई है, आपने मनी एक्सचेंज से ली है, जिस चैनल से भी ली है, वो हमें एक दे दें। नॉर्मली ये होता है कि ये वाले पार्ट मिसिंग होता है।
बट देन दैट्स अ प्रॉब्लम राइट, बिकॉज आप कह रहे हैं कि यार एक बच्चा है वो फ्री लांसिंग कर रहा है, इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम राइट, क्योंकि वो कह रहा है कि यार आपको कहीं से पैसे आए दे दें, पाकिस्तान में तो आता ही नहीं ना, मनी एक्सचेंज तो नहीं देता आपका। अगर मैं लेट्स से फाइवर पे जाता हूँ या मैं इवन गूगल एडसेंस पे जाता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है वो है आई बैंड डाल के। अब मैंने पहली दफ़ा जब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए, और मुझे पहली ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, तो मैं फिर किधर जाऊँ राइट? सो हाउ, जब ये प्रोसेस इसका बन रहा था तो दिस डजंट मेक एनी सेंस कि अगर मैं यहाँ तक तो मैं आपकी बात मान गया कि अकाउंट खोल लिया मैंने, अकाउंट खोल के मैंने उसके ऊपर काम कर लिया, सो मैं दिखा सकता हूँ थियोरेटिकली कि लुक लिसन दिस इज़ माई एडसेंस अकाउंट और दिस इज़ माई फाइवर अकाउंट और एनी अदर अकाउंट, बट पेमेंट टू ट्रांजैक्ट ही तब होगी जब मेरे पास IBAN वाला अकाउंट होगा इन द फर्स्ट प्लेस राइट? सो हाउ डू यू रिकनसाइल विद दैट?
आई एग्री, देखिए अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक बंदा है वो आज पहला देना स्टार्ट करने लगा है, तो बैंक उससे पूछता है कि यार ये जो आप काम करने लगे हैं इसमें आपके पास ऑब्वियसली कोई एक ईमेल होगी, कोई एक प्रूफ होगा कि यार ये प्रोजेक्ट आपको मिला है उसकी ये पेमेंट है, तो उसने वो प्रूफ देना है प्लस पेमेंट का अपना थ्रेशोल्ड बताना है कि यार मुझे यहाँ से $500 महीने का आया करेगा, उसका इनफ है। एक बंदा कहता है जी मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, अब ये तो नहीं हो सकता 2 साल से वो काम कर रहा है उसका अकाउंट भी नहीं और पैसे नहीं ले रहा। आज के दिन में भी देर आर सो मेनी वेबसाइट्स जो ये फ्री लांसर्स की हैं जो आपको पैसे पिन बेस भेजते हैं, आप मनी एक्सचेंज पे जाएं वहाँ जाके आप वो पिन बताते हैं और पैसे ले लेते हैं, उसकी पूरी एक हिस्ट्री बनती है कि यार इस CNIC के ऊपर ये पैसा आया हुआ है, तो वो बताते हैं कि यार 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो बताते हैं यार मेरी इतनी छोटी अमाउंट आया करेगी। एक बंदा 2 साल से काम कर रहा है तो ही इज़ मेकिंग मे बी $10,000 अ मंथ, तो वो एक पूरी हिस्ट्री दिखाता है यार ये देखिए मैं 500 से शुरू हुआ था, अब मैं $12,000 ये लेता हूँ ये मैं अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो KYC की चीज़ें हैं, ये जैसे हमने पहले बात की ML
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग,
हाँ, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लेजिटिमेट नज़र आना चाहिए बैंक को, ताकि बैंक आपको एक लेजिटिमेट कस्टमर के तौर पर ट्रीट करे और बैंक आपकी किसी किस्म की कोई डाउट्स में ना पड़े कि यार जो पैसा आ रहा है ये क्यों आ रहा है
राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर मैं आपसे बात करूँ, पाकिस्तान में अभी तक 25% से भी कम लोग जो हैं वो बैंक हैं। 10 साल से तो एटलीस्ट हम सुन रहे हैं कि बैंकिंग को हमने बढ़ाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ानी है। स्टेट बैंक को मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली एटलीस्ट लास्ट 5 साल में तो उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, और हर किस्म की ان کے اینڈ کے اوپر وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے جو ہے نا ریگولیشن بھی نکال دی ہے, لائسنسنگ بھی نکال دی ہے, سارا کچھ کر دیا ہے. بینکڈ پاپولیشن نہیں بڑھ پا رہی, رائٹ. اب اس کے اوپر وین آئی اسپوک ڈفرنٹ پیپل ان دا بینکنگ انڈسٹری, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس, ہمیں وارہ ہی نہیں کھاتا. جو خاص کر کنونشنل بینک ہے وہ کہتا ہے یار میں ایک بندے کا اکاؤنٹ کھولوں, اس کے بعد ساری ڈاکیومنٹیشن بھی ہونا, اس نے اگر مہینے کا 20,000 روپیہ ٹرانزیکٹ کرنا ہے تو وہ مجھے وارہ ہی نہیں کھا رہا, کیونکہ میں نے تو اس کے ڈپازٹ کے اوپر پیسے بنانے ہیں, میں اس کے لیے اکاؤنٹ کھول رہا ہوں, جتنے میں پرنٹس نکال رہا ہوں وہ میرا وہیں پہ ضائع ہو جاتا ہے. سو دیر از این اکنامک پرابلم ویئر پیپل آر انیبل ٹو بی بینکڈ, رائٹ. آپ لوگوں کے کیس میں سلائٹلی ڈفرنٹ بیکاز یو آر اسینشلی اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, سو یو آر ناٹ ریئلی وریڈ اباؤٹ دا باٹم لائن ایز مچ ایز دا ادر بینکس. اسٹل جہاں پر ہمارے پاس بینک آف پنجاب بھی ہے, ہمارے پاس نیشنل بینک بھی ہے, ہمارے پاس تھیوریٹیکلی وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے تھے وچ وار سپوز ٹو میٹیگیٹ دس پرابلم آف دا پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر وچ واز اونلی گوئنگ ٹو لک ایٹ دی یو نو موسٹ ویلتھی کسٹمر. یہ ہم اس کے باوجود نہیں کر سکے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ پاکستان میں پینے والا پانی از سم تھنگ جو شاید ہر بندے کی نیڈ ہے,
رائٹ.
وہ ایک بندہ جاب لیس ہے, ایک بندہ ڈرائیور ہے, یا ایک بندہ بلینئر ہے, ہر بندے کی نیڈ ہے پانی پینا. اب یہاں سوال آ جائے گا کہ وہ پانی میں نے کون سا پینا ہے. لائک ایک بندہ جو ایک کسی بہت دور دراز کے ایریا میں رہتا ہے, اس کے لیے نل کا پانی پینا یا جو سپلائی کا پانی پینا تھا, اس کے لیے ایک بڑی عام سی بات ہے اور وہ ان کا یوز ٹو ہے پچھلی کئی نسلوں سے, دے ایکچولی گو فار اٹ. جبکہ ایک بندہ جو کسی میٹروپولیٹن سٹی میں رہ رہا ہے اور ذرا ہائجین کا خیال رکھتا ہے, تو وہ منرل واٹر کے علاوہ نہیں سوچ سکتا یا اس کے علاوہ میں نے کوئی پانی نہیں پینا. دین کمز گائز جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو منرل واٹر پاکستان میں بن رہے ہیں یہ بھی نہیں یار, یہ تو نہیں پینے والے ہیں یار, مجھے تو فرینچ واٹر چاہیے, مجھے تو دبئی والا جو المرا ہے وہ چاہیے. سیم گوز ود دا بینکنگ. ایک بندہ ہے, اب ہم فائنانشیل ایکسکلوڈیڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ ہے وہ کہیں ڈرائیور ہے, وہ کہیں پلمبر ہے, وہ کہیں کارپینٹر ہے, وہ کہیں دکاندار ہے, اس کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ اس کی بیسک نیڈ ہے بینکنگ سروسز, ناٹ دی برانڈ. سیم گوز ود دودھ والے برانڈس, کیا آپ کہ دودھ کے کھلے دودھ سے لے کے ٹاپ ناچ برانڈ تک اویلیبل ہیں سب, بٹ باٹم لائن ہے دودھ. بینکنگ سروسز ایز فار ایز آپ کی پوری ہو رہی ہیں, وہ بندہ فائنانشیلی انکلوڈیڈ ہے. تو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آپ نے آج سے 10 سال پیچھے جائیے آپ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار پلمبر کی ایک دکان ہوتی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا غلام رسول پلمبر. آپ وہاں جاتے تھے, بتاتے تھے یار میرا نل خراب ہے تو آ کے ٹھیک کر دو, وہ آتا تھا سامان شامان لے کے آپ کا نل ٹھیک کیا, 2,000 روپے پکڑے چلا گیا. بٹ آج آپ مارکیٹ میں جائیں تو ٹرینڈ ہیز چینجڈ. آپ کو ایک کھمبے کے اوپر, ایک دیوار کے اوپر, ایک جگہ پہ لکھا ہوگا علم دین پلمبر, نیچے موبائل نمبر لکھا ہوگا, دیٹس اٹ. اس کی کوئی دکان نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کو کال کریں گے, یار میرا مسئلہ ہے آ جاؤ. وہ آئے گا آپ کا ٹھیک کرے گا, جاتے ہوئے آپ اسے پوچھیں گے یار پیسے تمہیں کیسے دوں, وہ کہے گا مجھے اسی نمبر پہ جائز کیش کر دیں. آپ جائز کیش کر دیں گے, آپ ایزی پیسہ کر دیں گے. تو یہ چینج آیا ہے فائنانشیل انکلوژن سے. مجھے یاد ہے جب 2013-2014 میں والیٹ نیا نیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا اوور دی ایئر والے سسٹم سارا آیا, تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے, اسپیشلی ماسز کہتے نہیں نہیں یار میرے پاس والیٹ تو ہے لیکن مجھے پیسے اس میں نہ بھیجنا, مجھے کیش دے دو. کیوں؟ کہ مجھے ایجنٹ پہ جا کے پیسے نکلوانے پڑیں گے, وہاں وہ چارج کرے گا. تو یہ سنیریو بہت ڈفرینٹ تھا. اب سنیریو بہت, اب آپ کو ایزیلی لوگ انکریج کرتے ہیں کہ یار میرا جیز والیٹ ہے میرے, اس میں پیسے بھیج دو. تو تھنگز ہیز چینجڈ. اب آج کے دن میں بھی جو والیٹ ہے وہ کنونشنل بینک اکاؤنٹ کو کراس کر گیا. پچھلے 2-3 سال میں والیٹ آگے چلے گئے, اکاؤنٹ پیچھے رہ گئے.
150 ملین پاکستان میں والیٹس ہیں, دیٹس واٹ گوگل سیز. میں
بالکل بالکل. اچھا اب اس کے اندر بھی اگر آپ ٹرانزیکشنز بھی دیکھیں گے تو نمبر آف ٹرانزیکشنز بھی والیٹ کراس کر گیا ہے اوور دا اکاؤنٹ. ابھی میں کل یا پرسوں پڑھ رہا تھا جیز کیش کلیمز کے 40% آف دا راست آئی ڈیز بلانگس ٹو جیز کیش, وہ اگین والیٹ ہے. تو راست ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک کا, تو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 40% راست آئی ڈی ہماری ہیں. دیٹ مینس کہ یار لوگوں نے ایکٹیولی جا کے وہاں آئی ڈی بنائی اور اس کو یوز کر رہے ہیں. دیٹ شوز ٹرسٹ آف پیپل آن والیٹس اور ان کی بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہیں. اب آپ سوچیے کہ ایک والیٹ کی اگر 2 لاکھ روپے مہینے کی لمٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پلمبر جو وہ کام کر رہا ہے کیا وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ مہینے کا کما رہا ہوگا؟ نہیں, اس کی نیڈ پوری ہو رہی ہے. 2 लाख रुपए के अंदर उसकी, अगर उसको चाहिए कि यार नहीं मैं तो अब ज़्यादा कमाना शुरू हो गया हूँ, तो वही बैंक उसको उसी मोबाइल ऐप से ऊपर वॉलेट से कन्वेंशनल अकाउंट पे अपग्रेड की फैसिलिटी देता है, तो वो अपना अकाउंट अपग्रेड कर लेता है और उसकी लिमिट्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ यह है कि जहाँ लोग समझते हैं कि यार आपको पता है हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एग्री के साथ लिंक्ड है, हमारी जॉबलेस कम्युनिटी बहुत बड़ी है, फिर सबर्ब्स हमारे जो स्पेशली हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, मतलब सारा कुछ काम उनका कैश में चलता है और बड़ी छोटी कैश की हैंडलिंग उनकी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी उसमें आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा और टाइम लगेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि वाह वाह काम हुआ है और अभी भी काम हो रहा है।
राइट, इसमें आपने जिस तरह देखें वॉलेट की तो आपने बात कर ली, ट्रांजेक्शन लिमिट्स की भी बात कर ली, बट देन देर आर अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो के, चलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगी, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होंगी, राइट, जिसमें क्रेडिट स्कोरिंग है आपकी और यू नो आपकी वो है कि लोन्स हैं और बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। वो प्रोडक्ट्स अभी तक वॉलेट लेवल के ऊपर, जाहिर है कि वॉलेट इज़ अ वेरी कैश इन कैश आउट सिचुएशन, उसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें थोड़ा सा बल्कि ये भी ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के एंड के ऊपर ये किस तरह होता है, बट पाकिस्तान में जो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि वी हैव डन अ वेरी पुअर जॉब एट प्रोफाइलिंग पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज के लोन्स का जो प्रेमिस है उसके पीछे जो कोर इंजन है वो ये है कि यार किसी भी इंसान की मैं ट्रस्ट वर्दीनेस निकाल सकूँ। राइट, अगर आपके पास वो इंजन नहीं है ना तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली डिलिंक्वेंट कस्टमर्स बनाई जा रहे हैं, आप वो आते हैं लोग 2 नंबर करके चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं पूरा मुआशा ख़राब है, तो मसला एक्चुअली उस एल्गोरिथम में है जो कि आइडेंटिफाई ही नहीं कर सका कि कौन सा बंदा अच्छा है। बिकॉज हमारे यहाँ मैंने जो देखा है ना वो ये देखा है कि जो तंत्रबाज है ना वो तो हैक करके किसी ना किसी तरह निकल भी जाता है, घुस भी जाता है, क्रेडिट कार्ड भी निकलवा लेता है, पैसा भी करके भाग भी जाता है, और जो सीधा आदमी होता है जिसका बैंक का काम था कि उसको ढूंढे समझे और उसको प्रोडक्ट दे के भाई तू सीधा है तू ये प्रोडक्ट ले और उसको इस्तेमाल करे, उसको लिटरली एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि इट्स सच अ स्लॉपी मैकेनिज्म ऑफ हाउ, बस वो जी रोड ब्लॉक्स डाल दी गंदी किस्म की जिसको आप हैक करके वैसे ही घुमा सकते हैं। सो हाउ डू यू सी द क्रेडिट स्कोरिंग एंड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ इंट्रिकेट दैट इज, दैट हाउ कॉम्प्लेक्स इज दैट, उस पर क्या इनफ डेटा गैदर हो रहा है और उसके बेसिस पे प्रोफाइल हो रहा है?
देखिए इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक जैसे आपने बात की इसका ट्रेंड कि वॉलेट के ऊपर प्रोफाइलिंग नहीं हो रही है ताकि लोग ये लैंडिंग सर्विसेज ले सकें, नंबर 2 पाकिस्तान में हो क्या रहा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। नैनो लैंडिंग इज़ समथिंग जो आज से कोई 5-6-7 साल पुरानी बात, 8 साल पुरानी बात है, जहाँ पर एक्टिवली काम किया ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स ने कि नैनो लैंड लोन हम करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 अप टू 10,000 रुपीज़ का लोन आपने रियल टाइम पे लिया, 1 दिन में 2 दिन में 7 दिन में मैक्सिमम वापस कर दिया। मैं अपनी पिछले बैंक की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ पे हमने नैनो लोन को, इट वाज टोटली इन हाउस एआई बेस्ड मॉडल जो क्रेडिट स्कोरिंग करता था, पूरी इंडस्ट्री का जो एनपीएल था दैट वाज अबव 60%, लाइक 100 में से 60 लोन एनपीएल में जाते थे एंड आर नैनो लोन वॉज वर्किंग लेस देन 10%, बिकॉज वो प्रोफाइलिंग इतने अच्छे तरीके से हुई थी कि वो राइट कस्टमर को सेलेक्ट करके ही उसको लोन देता था। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर एक जो असल रोड ब्लॉक आप कह लें या एक बिहेवियर शिफ्ट है वो ये है कि लोग ECIB की परवाह नहीं करते। मैं इवन सैलरीड क्लास की बात,
व्हाट इज ECIB?
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट स्कोरिंग आपकी, जो स्टेट बैंक एक्चुअली पहले मैनेज करता था, अब प्राइवेट स्कोरिंग कंपनीज भी आ गई हैं जो बताती हैं कि यार ये जो बंदा है इसने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है और इसकी आज के दिन में NPL है कि नहीं है, ये ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है उसके ऊपर। तो आज के दिन में जो आपका इवन सैलरीड क्लास है वो भी अंटिल एंड अनलेस दे आर वर्किंग इन सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे डोंट केयर अबाउट ECIB कि ठीक है यार लोन मैंने लिया है नहीं वापस किया तो खैर आइंदा लोन नहीं लूँगा। जब तक आप इसको कहीं लिंक नहीं करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बैंक का डिफ़ॉल्टर हूँ तो मैं मोबाइल सिम नहीं चला सकता, मैं अपना बिजली का मीटर नहीं चला सकता, मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, तब तक लोगों को इसका कोई कॉन्सिक्वेंस समझ नहीं आता। लोग कहते हैं ठीक है यार मैंने 25,000 रुपये देने हैं किसी के, ठीक है नहीं देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है इस चीज़ को फ्लरिश करने में, बिकॉज बैंकों ने, जहाँ आपका NPL 60% 70% 80% पे चला गया हो, वहाँ लोग बैंक स्टॉप लगाते हैं ना कि नहीं यार 80% वाले इतने बड़े रिस्क वाले एरिया में काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो लोगों को ECIB ख़राब होने के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए।
बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देखें जो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो ये है कि ECIB के कॉन्सिक्वेंसेस आप रियल लाइफ में ले आएंगे तो वो तो एक बड़ी सॉर्ट ऑफ समझ लें ये वही वाली, चले मैं उधर नहीं जाता, बट दुनिया में ECIB फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो एप्लीकेबल होती है। क्रेडिट स्कोर ख़राब है, मॉर्गेज नहीं मिलेगा, गाड़ी का लोन नहीं मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उसको जब आप रेगुलर लाइफ में ले आना शुरू हो जाएंगे तो वो बड़ी 1984 और वेलियन सॉर्ट ऑफ क्रेडिट स्कोर टाइप दुनिया आ जाती है। मैं इसका ऑल्टरनेट हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट समथिंग सिमिलर। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे रह रहा हूँ और मेरे घर में एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, बिजली का, और मैं पिछले 4 साल से उसकी बिल पेमेंट कर रहा हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत डेटा पॉइंट है, ठीक है, जो कि बता सकता है कि यार मेरा इतना बिल आता है तो मेरी कितनी मेरी लिमिट है और मैं उसको टाइमली देता हूँ या नहीं देता, ठीक है, बड़ा अच्छा डेटा पॉइंट है। मैं फूड पैंडा इस्तेमाल करता हूँ ना, और मैं उसमें अगर मुझे फूड पैंडा, और फूड पैंडा के पास ये डेटा है कि यार मैं जब ऑर्डर करता हूँ तो मैंने कितनी दफ़ा उसको एक्सेप्ट किया है, मैंने कितनी दफ़ा उसको कह दिया यार कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं, यार मुझे नहीं चाहिए। दराज के पास ये डेटा है, 1000 ऐप्स हैं जो कि एक्टिवली ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं ऑन आइदर द फोन नंबर और ID कार्ड, राइट। अनफॉर्चुनेटली एंड दिस सॉर्ट ऑफ डेटा कैन टेल यू एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, यू बी सरप्राइज, मैं 5वीं जमात में था तो मेरे वालिद साहब ने मेरा पहला क्रेडिट कार्ड बनवाया था 5000 रुपये की लिमिट का, जस्ट सो दैट आई कैन, ही वॉज अ बैंकर, सो ही वॉज लाइक यू नो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट कार्ड्स वर्क एंड अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू स्पेंड विद इन योर लिमिट्स। जब मैं इवेंचुअली जॉब पे गया, क्रेडिट कार्ड मेरा अपना प्रॉपर निकल आया सप्लीमेंट्री के बजाय, फिर मेरा उसके बाद उसकी अलहमदिल्ला लिमिट्स भी बढ़ती रही जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ी। जिस बैंक के पास था उसके पास तो वो तो फिर भी मुझे कुछ ना कुछ कर देता है, मैं किसी नए बैंक के पास जाता हूँ ना तो वो मुझसे कहता है यार एक काम करें, आप शुरू से बैठ के पूरा मुझे एक्सप्लेन करें कि आपके अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, मेरी पूरी हिस्ट्री फूड पांडा पे भी है, मेरी दराज पे भी है। यहाँ पर ना जो मैंने देखा है वो ये है कि पाकिस्तान में बैंकिंग पर्टिकुलरली वो इस पे करती है कि यार हमने तुम्हें नहीं सर्व करना अनलेस तुम प्रूव करो कि तुम सर्व होने वाले हो, रादर देन सेइंग के लिसन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द गुड गाय जो कि अच्छा कस्टमर है, जो कि यू नो डिफॉल्ट नहीं करेगा, जिसका रिस्क ऑटोमेटिकली कम है। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, बजाय इसके कि आप कस्टमर ढूंढने में वो एफर्ट लगाएं, वो बस ये होता है कि बेयर मिनिमम मैं क्या करूँगा जिसमें मुझे, जिसको भी मैं किसी तरह मना कर सकूँ ना, पहली फर्स्ट मैं उसको मना कर दूँ, फिर वो अगर बहुत ही डेस्परेट होगा तो। और ये लिटरली ये होता है कि मैं बैंक अकाउंट जब भी पाकिस्तान में खुलवाने गया हूँ ना तो आई एम ऑलवेज ऑन द स्पॉट, मेरा अपना पैसा हलाल का टैक्स पेड मैं जमा कराने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा होता है मैं कोई गलत कर रहा हूँ काम ना, तो वो मैनेजर आपसे 4 चीज़ें ऐसी पूछेगा या वो 4 ऐसा पूरा प्रोसेस डिजाइंड है कि इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग एंड इट्स डिजाइंड टू थ्रो यू ऑफ एंड पुट यू ऑन अ ट्रायल एंड यू हैव टू नाउ प्रूव योर सेल्फ, राइट। सो क्रेडिट स्कोरिंग में भी ये प्रॉब्लम है। मुझे मेरा क्वेश्चन ये आता है कि देखें आपने जो कहा कि 60% पाकिस्तान में लोन्स बड़े कम निकल रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली वी आर वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें वहाँ पे तो वो हर चीज़ उस पर निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ भी उसी पे, घर भी उसी पे ही हैं। अब वो 60% है इस वजह से बिकॉज जो थोड़ी सी अमाउंट्स हैं वो उन अमाउंट्स में सारे वो लोग हैं जो हैं ही दो नंबर, उन्होंने बस किसी तरह पैसा निकाल के जाना भाग जाना है। वेर एज जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि एक्चुअली सीधी सादी है, मैं पिछले दिनों समवन केम टू मी एंड उन्होंने कहा कि यार वो AC लेना है तो मुझे शॉप बता दें जहाँ से मुझे इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाए। और मेरे लिए पहली थॉट ये थी कि यार why is this person, why does this person not have the option to go to a financial institute, right? But वो मसला वो यही है कि वो एक बेसिक उसके पास बैंक अकाउंट ज़रूर होगा लेकिन या तो उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या उसको XYZ, वो इतनी सारी कंप्लायंस की चीज़ें हैं कि वो लड़का नहीं कर सकता। हालांकि वो जिस दुकान के पास जाएगा वो मुझे पता है वो जाएगा, वो AC लेगा और वो उसके पैसे देगा, बट और वो फूड पैंडा भी करता है, वो दराज भी करता है, वो डेटा पॉइंट्स उसके एग्जिस्ट करते हैं, बट नोबडी हैज पुट इट टुगेदर। सो व्हाई डू यू थिंक वी हैवंट बीन एबल टू इनोवेट, लाइक दिस इज बेसिक फंडामेंटल इनोवेशन कि यार डेटा पॉइंट्स फोन नंबर और ID कार्ड पे पड़े हुए हैं उसको हम इकट्ठे क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
सही है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो क्रेडिट स्कोरिंग है ना उसके लिए चूंकि एक सेट डिफाइंड प्रोसेस है कि यार ये क्रेडिट एजेंसी है जो आपको क्रेडिट वर्थिनेस देगी किसी की, अब जैसे हम दराज की बात करते हैं, जैसे मैं स्पेशली आपने ISCO या LSCO के बिल की बात की, वहाँ पे आपके पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट है टाइम पे बिल पे करने का, वो क्या है कि आज आपका बिल 10,000 रुपये, आप 25 को जमा नहीं कराएंगे तो ये 14,000 रुपये हो जाएगा। सो बाय ऑल मीन्स बंदा जाके 13 तारीख को ही जमा कराता है ताकि मेरे बिल पे 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ना रचें। दैट्स द बिगेस्ट फियर।
राइट,
अगेन जैसे मैंने बात की कि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी ECIB ख़राब होने में और आपके डिफॉल्टर होने में आपको कोई फियर का एलिमेंट नहीं है कि यार मैं 25,000 रुपये खा गया हूँ तो दैट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि यार चूंकि ECIB की किसी को केयर ही नहीं है, तो जब मेरा लोन जाएगा, जाहिर बात है एक टोटली अनसिक्योर्ड लोन है वो जाएगा, तो वो सारे का सारा बर्डन एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे पे है। अब अगर हम आते हैं ना बात कि हम दूसरे डेटा पॉइंट से चीज़ें उठाते हैं, दूसरे डेटा पॉइंट से चीज़ें उठाने का मकसद ये है कि उनका मैंडेट वो नहीं है, सिनेरियो टोटल फ़र्क है। फिर आप इस बात को मानेंगे कि हमारे पास तो मोबाइल सिम्स, इवन अगर मेरी वाइफ मोबाइल सिम यूज़ कर रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे नाम पे है, उसके अपने नाम पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंड है कि फीमेल की सिम उनके भाई, उनके हस्बैंड, उनके फादर के नाम पे होती हैं। अब वो जो अकाउंट बना हुआ है दराज का, वो बना हुआ है सोहेल मलिक के नाम पे, उसकी यूज़र मेरी बेटी है, बिकॉज मैं तो फूड पांडा ज़्यादा ऑर्डर नहीं करता, वो ज़्यादा ऑर्डर करती है, तो वो जो क्रेडिट वर्दिनेस है फ्रॉम द फूड पांडा, उसके एलिमेंट वो मैच नहीं करेंगे उस बंदे के पैटर्न के साथ कि वो जो बंदा लोन एक्चुअली लेने आया हुआ है, वो बंदा कह रहा है जी मुझे 25,000 रुपये इसलिए लोन दें कि मैंने लेट से छत वाले दो पंखे लेने। अब उसका एक सर्टन कोई बिजनेस है, कोई दुकानदार है, वो कोई ठेले वाला है, तो उसको मैच करना उसके प्रोफाइल से, फिर उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करना फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरो या फ्रॉम द स्टेट बैंक, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉर बैंक्स टू टेक देयर रिस्क ऑन। जैसे मैंने बताया कि बैंक्स के नैनो लोन के जो NPL है वो 60% क्रॉस कर गए हैं, उसकी रीज़न यही है कि शुरू में ओपन किया उन्होंने सबके लिए, बड़ा एक्टिवली लोन दिया, और उसकी बड़ी ब्यूटी ये है कि यार आप सिंपल ऐप में गए, आपने कहा मुझे 10,000 रुपये लोन चाहिए, इमीडिएटली यू गॉट 10,000 रुपीज़ इन योर अकाउंट। अब एज अ कस्टमर मेरा सबसे पहला फ़र्ज ये है कि मैंने अपना जो भी काम करना है वो करूं, और उसके बाद 10,000 रुपये वापस करूं जो 7 दिन का मुझे मार्जिन दिया हुआ है, महीने का मार्जिन दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फियर फैक्टर है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि वो इस क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर वहाँ बाउंड है कि यार ये जो बंदा जिसकी ECIB ख़राब है उसके ऊपर हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आप किसी को 10,000 रुपये देते हैं तो आप इसके ऊपर लेट से 3 दिन का लोन दे के आप उसके ऊपर बना रहे हैं 50 रुपये, और वर्सेस आपका पूरा 10,000 रुपये ही चला गया, तो वो 50 रुपये कितने कस्टमर से आपने बनाने थे, लेट से 200 कस्टमर से, तो आपका एक कस्टमर ने लोन खाया तो 200 कस्टमर का प्रॉफिट भी आके आपकी बॉटम लाइन पूरी नहीं कर सकता। दैट्स द बिगेस्ट फियर फैक्टर।
थोड़ा सा मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर, हाउ डू यू थिंक द स्टेट बैंक हैज परफॉर्मड, एंड अभी इस वक्त डू यू थिंक द इम्पेडिमेंट फॉर ग्रोथ लार्जली इज बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और इज इट बिकॉज ऑफ लाइक यू मेंशनड अदर फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी के भी पोटेंशियली फैक्टर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक?
नहीं, माशाल्लाह स्टेट बैंक इज़ डूइंग रियली वेल, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर है स्टेट बैंक का विद इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। आप कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई प्रोडक्ट, कोई भी नई इनोवेशन करना चाहते हैं, दे सपोर्ट यू। आप जो समझें कि जितना कोऑपरेटिव रेगुलेटर इस वक्त स्टेट बैंक एक्ट कर रहा है, बहुत कम होता है कि इतना ओपन एनवायरनमेंट हो, आप नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक सपोर्ट यू। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप कहें कि यार फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फलां काम हो सकता था लेकिन बिकॉज ऑफ दी रेगुलेटरी इशूज़ ये नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली जो BISP है, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है स्टेट बैंक ने, बहुत ज़्यादा ईज आउट किया है। इसके अलावा जब वॉलेट्स शुरू में आ रहे थे तो सैलरीड वॉलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही कि यार आप फ्लेक्सिबल कर दें ये जो सैलरीड क्लास है। जैसे आपने कहा ना कि मेरे ड्राइवर का अकाउंट नहीं खुलता था लेकिन जब मैंने कंपनी बना कहा कि मेरे एम्प्लॉई हैं तो चीज़ें पे, दैट्स द रीज़न कि स्टेट बैंक ने कहा अगर बंदा एम्प्लॉयड क्लास है और उसकी कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो आप उसके लिए ये चीज़ें फ्लैक्स कर दें। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी पॉजिटिव बिहेवियर है फ्रॉम द स्टेट बैंक।
नेशनल बैंक की ब्रांचेस कितनी ज़्यादा हैं?
नेशनल बैंक की इस वक्त कोई 1500 के करीब ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में। ऑब्वियसली हमारा बिंग स्टेट एंटिटी, हम हर जगह पे हैं, तो आप अगर देखें तो देर आर सो मैनी एरियाज जहाँ पे आपको
प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है
और बैंक्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन नेशनल बैंक बीइंग अ स्टेट ओन्ड बैंक वहाँ पे है टू सर्व द कस्टमर्स, टू फैसिलिटेट कस्टमर्स इन फ्रांच।
आई थिंक आप लोगों का वो हाईएस्ट एटीएम भी लगा
हुआ है जो हमारा है। जी बिल्कुल
राइट। प्रॉब्ली व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि बिकॉज यू आर अ नेशनल, क्योंकि आपने बिस्प का नाम लिया, तो बिस्प काफ़ी दफ़ा रूरल में होता है यू नो, और उस पर जब इनको ट्रांसफर्स होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सिर्फ ब्रांच से ही निकाल सकते हैं, और उसमें फिर एक्सेसिबिलिटी किस तरह से मैनेज होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो ये इजी पैसा जैश का इस टाइप है, ये तो ये ना कि यार आपके करीब कोई वेंडर बैठा है आपने उससे करवा लिया, बट बैंक्स आर बैंक्स एंड सो इफ दे आर लेट्स से 20 किलोमीटर्स अवे देन दे आर 20 किलोमीटर्स अवे और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों के केस में वो कैसे मैनेज होता है?
नहीं देखिए, बिस्प के जो बेनिफिशरीज हैं उनके पास डेबिट कार्ड भी होता है, अगर उनका अकाउंट है अकाउंट है, अदरवाइज वॉलेट है तो वॉलेट है, तो अगर वॉलेट है उनका तो किसी एजेंट पे जाके भी कैश आउट कर सकते हैं, अगर एटीएम कार्ड है तो जहाँ भी एटीएम है
वहाँ जाके, तो वो खुद डालते हैं कि यार हमें पैसे इस पे ट्रांसफर चाहिए।
हाँ, तो पूरी
वो ऑप्शन उनके पास
एग्जैक्टली बेनिफिशरी की पूरी एक डेटाबेस मेंटेन्ड होता है, उसमें होता है कि जी ये बेनिफिशरी है इसका फलां बैंक में अकाउंट है, फलां बैंक में वॉलेट है, ये उसका डेबिट कार्ड है।
राइट, मेक सेंस। रास का मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अप अंटिल अ कपल ऑफ इयर्स अगो हम सुन रहे थे कि रेल्स बिछाई जा रही हैं, फिर उन्होंने वो सॉर्ट ऑफ बी टू बी टाइप ऑफ लॉन्च किया, और जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले उन्होंने तनख्वाहें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थी उनकी तनख्वाहें ट्रांसफर करना शुरू की, अब जो है वो आपको ऐप्स पे नज़र आ रहा है रास्त और फ्री ऑफ कॉस्ट और सारा कुछ है। व्हाट्स द अपडेट, किस स्टेज के ऊपर है? अर्ली डेज में हमने सुना था कि कुछ इनोवेशन आ रही हैं रास्त में, जिसमें यू नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़, सो एसेंशियली ऑटो डिडक्शन सब्सक्रिप्शन इस तरह की चीज़ें इनेबल हो जाएंगी, वो सारा कुछ लाइव हो चुका है अब एट दिस पॉइंट इन टाइम?
देखिए IBFT आपको पता है बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही है, एक बड़ा सिंपल ट्रेंड है अमंग द कस्टमर्स कि वो अपना डिपॉजिट उस बैंक में रखना चाहते हैं जहाँ पर मनी मूव करना ईजी हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका ए बैंक में अकाउंट है, आपने उसमें 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपने जब भी किसी बंदे को पैसे भेजने हैं एंड दैट बैंक चार्जेस यू रेट से 200 रुपीज़ फॉर 10,000 रुपीज़, तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, कि अगर मैंने महीने में 4 दफ़ा भी भेजा तो मुझे 800 रुपये तो हर महीने की कॉस्ट है। तो रास्त एक स्टेट बैंक का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर इट्स फ्री फॉर कस्टमर, तो आप 10,000 छोड़ें 1,000 रुपये अभी हर रोज़ भेजें तो आपके कोई चार्जेस नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ज़ाहरी बात है एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट है, स्टेट बैंक इसको लीड कर रहा है टू फैसिलिटेट कस्टमर्स, तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग इसको एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो P2M वाला लेग इसका आया है जहाँ पे QR के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि चाइना के अंदर मोर देन 900 मिलियन रिटेलर्स हैं QR के ऊपर, अब वहाँ पे चूँकि एक ट्रेंडिंग में चीज़ है, आप किसी के पास जाके टमाटर भी ख़रीदते हैं, कहीं जाके आप सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो आप QR के थ्रू पे कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे डाउन द लाइन 3-4-6 महीनों के अंदर आप देखेंगे छोटी छोटी दुकानों के ऊपर ये QR कोड लगे होंगे, आपने जाके दूध का पैकेट लिया, आपने उसको 100 रुपया ट्रांसफ़र करना है, आप QR स्कैन करें और ट्रांसफ़र कर दें, तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाएगा, बहुत बड़ा एक यूजेज लाएगा। आज के दिन में आपको पता है कैश यूजेज लोग प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ़ दी सिक्योरिटी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर इश्यूज, फिर कैश हैंडलिंग की इट्सेल्फ एक बड़ी आप समझ लें कि प्रॉब्लम भी है, फिर लोगों को डर भी होता है कि यार छिन जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो P2P ट्रांसफ़र्स हैं ये ट्रेंडिंग में हैं और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आएंगे आफ्टर दी लॉन्च ऑफ ये जो प्रॉपर मर्चेंट QR है, इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑब्वियसली बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, सारे बैंक्स इस पे काम कर रहे हैं, अब जो एक्सेप्टेबिलिटी है ऑन दी ऑल मोबाइल एप्स इट्स देयर, तो वो जो QR है कोई किसी भी बैंक की ऐप हो वो उसको रीड करेगी और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन चलाएगी।
QR निकालने का तरीका क्या है, लाइक हाउ डज वन क्रिएट हिज QR?
सिंपल, आप अपनी मोबाइल ऐप में जाएंगे तो आपका जो QR सेक्शन है वहाँ पे आपका आपका QR भी दिखाएगा और स्कैन का ऑप्शन भी देगा, दोनों ऑप्शन,
और वो यूनिफाइड QR है बेसिकली,
यूनिफाइड QR हर मोबाइल ऐप उसको रीड करेगी। आपने सिंपल किसी को भेजना है अपनी अकाउंट डिटेल, उससे अपना QR कोड निकालें और उसको WhatsApp कर दें, आप उसको ईमेल भेज दें, वहाँ स्कैन करेगा आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।
इंटरेस्टिंग, और उसमें वो यही है कि चाहे वो वॉलेट हो चाहे वो
कुछ भी हो। अब एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, एक बंदा है वो पान शॉप चलाता है, उसका वॉलेट है किसी भी वॉलेट के ऊपर, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यूबेल ओमनी है, उसने सिंपल अपनी ऐप में गया, वहाँ से उसने अपना क्यू आर कोड निकाला, प्रिंट निकाल के उसने दुकान पर लगा दिया कि जी आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इस QR के थ्रू कर दें। अब तो डायनेमिक QR आ गया है कि आप जब किसी को QR भेजेंगे तो उसके अंदर अमाउंट भी आ रही होगी कि आपने एक बंदे से 2000 रुपये का सौदा ख़रीदा, जब आपको QR भेजेगा तो उसमें 2000 रुपये होंगे, आप जब QR को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली
सो इनवॉइस एसेंशियली
एग्जैक्टली।
इंटरेस्टिंग, अभी जिस तरह मैंने ये अपनी ऐप पे डाल के ये मैंने उसने लिखा जनरेट QR तो जनरेट QR आ गया, अब ये जो जनरेट QR है ये बेसिकली मेरे आई बैन के अकाउंट से आ गया।
बिल्कुल,
हाउ इंटरेस्टिंग, मुझे पता भी नहीं था। सो यू गाइस कैन प्रॉब्ली चेक दैट आउट एज वेल, अपनी ऐप्स पे जाएं जाके QR जनरेट करें। बट बल्कि इनफैक्ट जवाब भाई ये ज़रा ना डालिएगा इसके ऊपर हमारे जो स्क्रीन है उस पर डालिएगा और आप लोग ट्राई कर सकते हैं 1 रुपया भेज के कि इस पर आता है नहीं आता, जस्ट चेक दैट आउट एज वेल। बट सही है, सो QR आप कह रहे हैं कि एसेंशियली अब वो जो उसका रेल्स हैं वो आ चुकी हैं और अब वो डिप्लॉयमेंट की तरफ है।
बिल्कुल,
एंड वी कैन एसेंशियली सी, और ये अगेन मोबाइल वॉलेट्स वगैरह उस पर भी सारा कुछ है। गवर्नमेंट सर्विसेज का मुझे बताइएगा, क्योंकि बचपन से आप बड़े होते तक मेरा जो टच पॉइंट रहा है नेशनल बैंक के साथ वो ये रहा है कि यार कोई बिजली का बिल जमा करवाने जाते होते थे और एक लाइनें लगी होती थी और वो हमेशा यू नो खप होती थी। हाउ मच ऑफ दैट हैज़ बिन डिजिटाइज्ड एंड हाउ मच ऑफ दैट इज़ एक्चुअली यूज डिजिटली? सो एक तो है ना कि डिजिटाइज कर दिया हमने, बट उसमें पब्लिक किस हद तक उसको एक्चुअली डिजिटली इस्तेमाल कर रही है वो एक अलग क्वेश्चन है ऑल टुगेदर, राइट? सो जो आप लोगों का एक मेजर वो रहा है हमेशा कि जी ट्रैफिक चलान है तो नेशनल बैंक ने डील करना है, तो बिल्स हैं तो नेशनल बैंक ने डील करने हैं, वो अब किस हद तक डिजिटाइज हो चुका है?
अब देखें, ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो माइंड शिफ्ट है कस्टमर का वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अब इस वक्त हमारा माशाल्लाह 1.6 मिलियन प्लस मोबाइल ऐप का जो है वो यूज़र है और हमारा एट एनी गिवन पॉइंट टाइम मिलियन प्लस हमारा एक्टिव कस्टमर्स है जो हमारी मोबाइल ऐप को एक्टिवली यूज़ करता है। आप कोई भी बिल ले लें, बिजली का, गैस का, पानी का, फ़ोन का टॉपअप, आपके बच्चों की फ़ीस हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बिल है, वो सब कुछ मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। आपको एक्चुअली ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ब्रांच नहीं किसी भी ब्रांच को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना बिल उसमें डालें और पे कर दें। कुछ लोगों का एक जारी बात है, एक माइंड सेट होता है कि नहीं जी मैंने फिज़िकल बिल ठप्पा लगवा के अपनी फाइल में लगा के रखना है। ओबियसली उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा कि यार ब्रांच में जा के गर्मी में खड़े होना, वहाँ जा के बिल पे करना रिस्की है, मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है, हमारे वो टिल्ट कम हो रही हैं। आपने इस्लामाबाद ट्रैफिक चलान आपका हुआ है, आप और ये मोबाइल ऐप से जाके पे कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पे करते हैं। अब तो आप देखें जहाँ आपका चलान होता है वहीं पुलिस वाला आपको कहता है कि जी आप ये वॉलेट से पे कर दें। तो थिंग्स आर देयर, लोगों का आहिस्ता 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 ट्रेंड उस तरफ जा रहा है। एक इट्स वेरी स्ट्रेंज लेकिन एक जनरल परसेप्शन है अमंग द कस्टमर्स कि जी अगर कोई सीनियर सिटीजन हैं या कोई वुमेन है तो उनकी नीड नहीं है ये मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग, वो वहीं बेहतर है चेकबुक पे रहें, जबकि ऐसा नहीं है। ई सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंस्टेड ऑफ़ के जी वॉक इन करें ब्रांच में जाके लाइन में लगें, वहाँ खड़े होकर काम करें, उसके बजाय बेहतर है अपनी मोबाइल ऐप खोलें, अपना जो भी ट्रांजेक्शन करनी है वहाँ कर लें। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना, स्टेट बैंक भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, बाकी सारे बैंक्स भी काम कर रहे हैं कि लोगों को डिजिटल चैनल्स पे ले आएँ, और लोग मूव हो रहे हैं। अगर आप आज टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन देखें इन द इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री तो 80% ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रही हैं, 20% ट्रांजेक्शन फिजिकली हो रही हैं। तो ऑलरेडी शिफ्ट इज़ देयर, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये और बढ़ता जाएगा।
राइट, सुहेल भाई मैं यहाँ पे रैप अप करूँगा, आई एम गोना आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, आई वांट योर इनसाइट ऑन दैट। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान? अगेन पर्सनली आई एम अ कॉशियस ऑप्टिमिस्ट, बॉर्डर लाइन पेसिमिस्ट, लार्जली बिकॉज आई हैव हर्ड द सेम थिंग फ्रॉम द बैंकिंग एंड फिनटेक सेक्टर, एंड मोर ऑफन दैन नॉट वो जो चेंज जिस स्पीड के ऊपर हमने एक्सपेक्ट किया था वो आया नहीं, पर्टिकुलरली जब हम रीजन में देखते हैं। चाइना से मैं कंपीट नहीं करता, वो तो बहुत आगे हैं, वो तो बहुत बड़े हो चुके हैं, बट इंडिया हैज़ डन अ फेयरली गुड जॉब पोस्ट UPI एंड जो 2016 के बाद से उनका जो डिजिटाइजेशन की तरफ शिफ्ट रहा है, हमने अनफॉर्चुनेटली वो स्पीड नहीं पकड़ी। जो कि चले मैं इसमें ये ग्रांट कर दूंगा कि अब मुझे लगता है कि टॉप टू बॉटम एक रियलाइजेशन है जिसमें हमने कैश को ख़त्म करना है, हमने डिजिटल पे जाना है, और हमने क्योंकि हम अब हमारी ना इकोनॉमिक्स की डायरेक्ट जो कड़ी है वो इसके साथ जुड़ गई है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कोई उसके बाद ऑप्शन बची नहीं है एसेंशियली। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन when you look at the future, ke yaar acha banking industry, particularly digital banking industry, transactions ki baat agar hum kare, digital products, banking, financial products ki hum baat kare, you know, we're still as a society, hum abhi bahut primitive hain. Hamari ek bahut badi population hai, bahut young population hai. The opportunity is very much there, but hamari savings rates bahut bure hain, hamari investment rates bahut bure hain. ہمارا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہے اور ان اے وے رینٹ سیکنگ ہے, وہ بس سارا کا سارا ڈپازٹ اٹھاتا ہے اور بینک گورنمنٹ کے بانڈس میں ڈال دیتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اپرچونیٹی ٹو ایون ریز منی نہیں ہے کہ وہ کیپٹل ریز کر کے کہیں انویسٹ کر سکیں. تو یو نو دیر از اے لاٹ آف وین یو لک ایٹ دا بینکنگ انڈسٹری, دیر از اے لاٹ دیٹ از رانگ ان پاکستان. اس کانٹیکسٹ میں اس وقت جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر, کہ یہ انڈسٹری کس طرف جائے گی, کس طریقے سے انوویٹ کرے گی پوٹینشیلی, اور کیا ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں, جس میں میں بہت ریڈیکل بات نہیں کر رہا کہ یوں اگر دنیا بدل گئی تو ہم کچھ ایسے ہو جائیں گے, بلکہ ریئلسٹکلی پوٹینشیلی ہمیں آنے والے وقت میں نظر آئیں گے.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سے 50 سال تک جتنا کام بینکنگ میں ہونا ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ میں ہونا ہے. مطلب آپ فائنانشیل انکلوژن کو لے لیں, آپ فائنانشیل ایکسیس کو لے لیں, وہ سارے کا سارا ڈیجیٹلی ہوگا. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ آ گئی ہے, موبائل ایپس آ گئی ہیں, انٹرنیٹ بینکنگ آ, تو اب ایسا کوئی بینک آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو یہ سروسز نہیں آفر کر رہا. اب اڈاپشن جو ہے اب اس کی گیم ہے ساری, کہ جو آپ نے 25% پہ 24% پہ پہنچا دیا ہے, اس میں جو باقی اگلا گیپ ہے. اب ایک چیز سمجھنے والی ہمیں یہ بھی ہے کہ ایک ہے ہماری پاپولیشن سائز, ایک ہے ہمارا ہاؤس ہولڈ. میں رفلی بھی بات کروں تو اگر ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں تو ہاؤس ہولڈ ان ڈیوائڈ بائی 5 کر لیں تو آپ کا 5 کروڑ کا ہاؤس ہولڈ ہے. اب اگر ہاؤس ہولڈ میں آپ میجورٹی کی بات کریں گے, اوبویسلی آپ کو پتہ ہے ہماری میجورٹی جو کلاس ہے وہ ایگری سے ریلیٹڈ ہے, میجورٹی کلاس جو ہے ہماری لوور مڈل کلاس ہے. تو لوور مڈل کلاس کے اندر اور ایگری فیلڈ کے اندر, اگر گھر کے اندر, میں فیملی کی بات نہیں ہوں, میں گھر کی بات کر رہا ہوں, گھر کے اندر ایک ایک بندے کا والیٹ یا اکاؤنٹ ہے تو اٹس مور دین انف فار دیم. بیکاز ایک گھر کے اندر میاں بیوی ہیں, 3 بچے ہیں ان کے, بیٹے کا اکاؤنٹ ہے یا بیوی کا اکاؤنٹ ہے یا بندے کا اکاؤنٹ ہے, تو ان کی سرو پرپز جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. اب جو باقی ہے کہ جی فار ایگزامپل گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 میں سے 3 کے اکاؤنٹ کیوں نہیں ہیں, 5 کے 5 کے اکاؤنٹ نہیں ہو سکتے ہیں, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. پھر ہماری فائنینشیل نیڈس اور جن مارکیٹس کے ساتھ ہم کیا, ان کی مارکیٹ, ہماری جو نیڈس ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم 150 ملین پلس والیٹس پہ چلے گئے ہیں, 100 ملین پلس ہم چلے گئے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس پہ, تو ہم نمبر تو ہم نے بڑھا دیا ہے. یوزیج اس کی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یار ایز اینڈ کنوینئنس سب سے زیادہ یہاں پہ ہے. اڈاپشن آلریڈی جیسے میں نے بتایا کہ 80% اڈاپشن ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے, لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, اڈاپشن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور گوئنگ فارورڈ اور بڑھے گی.
چلیں سہیل بھائی, تھینک یو سو مچ, آئی ہوپ کہ وی کین سی دیٹ ہیپن ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ شیئرنگ آل دیٹ انسائٹ.
تھینک یو ویری مچ.
اینڈ فار آل آف یو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا دوستوں نے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا پاکستانز فائنینشیل سیکٹر, فن ٹیک سیکٹر اینڈ بینکنگ سیکٹر. آپ کیا بینکنگ ایپس یوز کرتے ہیں, آپ کوئی یو نو یہ نیو ایج نیا پے سادہ پے ٹائپس یوز کرتے ہیں یا کوئی پراپر بینک کی ایپس یوز کرتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے, آپ کو لگا ہے کہ کوئی انوویشن آئی ہے, بہتری ہوئی ہے پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف ڈیجیٹل. مجھے ایک سوال کا ضرور جواب دیجیے گا اگر آپ دے سکیں, کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم یو گائز وینٹ ٹو اے برانچ کسی بھی بینک کی, کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی. آئی لو ٹو ہیئر دیٹ دا ریزلٹس آف دیٹ سروے. بٹ اینی ویز, دس واز سید مزمل حسن زیدی. یو آر واچنگ تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.